ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम के बारे में हमारी कहानियां आगे बढ़ रही है। हरे कृष्णा। तो जब भी किसी भी जीव ने वृंदावन धाम में ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया है, उनका पूरा जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक दृष्टि से समाप्त हो गया है, क्योंकि भगवान भी स्वयं वहाँ पर ऐश्वर्य दिखाने के बाद में हार जाते हैं। हमने आपको कई उदाहरण दिए, ब्रह्मांड मुमि दिखाया तो कुछ देर बाद में समाप्त हो गया, चतुर्भुज विष्णु का दर्शन दिया तो समाप्त हो गया। इसलिए योग विद्या सीखने के लिए, ध्यान और तप करने के लिए कभी वृंदावन जाना नहीं चाहिए। जैसे विदेश की भूमि वैसे देखा जाए साधारण दृष्टि से तो भजन करने के लिए योग्य नहीं है, विदेश की भूमि इंद्रिय भोग करने के लिए बहुत योग्य है। कुछ लोगों ने महाराज को प्रश्न किया था एक बार, अरे वो सिंगापुर में हर 2 सेकंड में एक फ्लाइट उड़ती है, अब जब तब जब देखो तभी आकाश में एक फ्लाइट की लाइन रहती है, ऐसे 2-2 सेकंड के बाद में उड़ने वाली, और कोई क्रैश नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, परफेक्ट चलता है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? एक प्रकार से ऐसा मराठी में कहते हैं ना, खोचक प्रश्न, मतलब बहुत तकलीफ वाला प्रश्न, किसी को दर्द देने के लिए पूछा प्रश्न। अगर सिंगापुर के लोग कर सकते हैं, भारत के लोग क्यों नहीं कर सकते? तो महाराज ने उसको बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भारत की भूमि जो है ना वो अध्यात्म के लिए है, यहाँ पर भक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी 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 पनप जाती है, और अगर आप बोलेंगे कि टेक्निकल एक्सेलेंस, तांत्रिक सर्वश्रेष्ठ सिचुएशन, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वो आध्यात्मिक विषय के लिए बनाई गई है, आध्यात्मिक विषय में उन्नति प्रगति करने के लिए ये भूमि का प्रभाव वो है। इधर आप कितना भी कुछ भी करोगे ना टेक्निकली तो उतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, हर जगह अपने अपने गुण में बनाई जाती है। तो भारत भूमि का पूरा अस्तित्व जो है वो सत्व गुण में एक्चुअली बनाया गया है, अभी लोग उसको अच्छी तरह तमोगुण ही बना रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन और उसमें आध्यात्मिकता के अंदर भी बहुत सारे विषय हैं, जैसे ऐश्वर्य, माधुर्य, औदार्य, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, वो बहुत क्या कहते हैं सुपर फाइंड स्पेशलाइज्ड विषय हैं। तो उसमें अगर आप हिमालय में जाएंगे भारत में तो अध्यात्म वहाँ पर भी है, लेकिन अध्यात्म वहाँ कैसा है, योग सिद्धि और अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग, सहज योग, ज्ञान विरक्ति, हिमालय में हमारे गुरु जी तो थे ना कुछ समय के लिए, गुरु जी हमारे वहाँ पर थे, तो वहाँ पर वो एक बाबा को मिले जो 800 वर्ष के थे लेकिन दिखने में एकदम जवान थे, कैलाश बाबा। और एक थे टाट वाले बाबा, उनका उम्र शायद 1000 साल के ऊपर था लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि तो कभी कभी बात करते करते वैसे कहते थे कि मैंने क्या कुछ 700-800 वर्ष पहले का घटना की, वो बोलते थे कि मैं वहाँ पर था उस समय, ऐसे बोलते थे, समझे आपको। जैसे अभी जब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया तब मैं था उधर देहांत में उसके, तो सडनली आपको लगेगा अरे कितने साल पहले आप जन्म लिए थे, ऐसे ही बीच में कभी कभी एक आध बात बोल लेते थे तो लोग समझते थे कि अरे वो अभी भी थे। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं और तप है वैसे वो करने के लिए हिमालय की भूमि बहुत परफेक्ट है, काशी की भूमि बहुत परफेक्ट है जहाँ पर्वतमय प्रदेश है, और भगवान की बहुत ऐश्वर्यपूर्ण सेवा करने के लिए बद्रीनाथ, द्वारका, उडुपी और श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी, अयोध्या भी कुछ हद तक, वो सब भगवान के लिए बहुत ऐश्वर्यपूर्ण सेवा होती है वहाँ पर। अभी आप जाइए श्रीरंगम में, हर एक गहना सोने का है, उडुपी में जाइए आप, जब भी जाओ किसी भी दिन, उत्सव हो ना हो, वीकडे हो, वीक ऑफ हो, कुछ भी हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ हो, चक 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 सोने और हीरे के गहने चमकते रहते हैं। एक आचार्य ऐसे हैं, उन्होंने अपने सेवा में, उसको पर्याव कहते हैं, पर्यावा, पर्यावा मतलब दो दो साल के एक सेवा होती है उनकी, और वो 8 मठ हैं तो 16 साल में उनका एक साइकिल पूरा होता है, वो मध्वाचार्य ने उनको सेटल करके दिया था। तो अपने पर्याव में एक स्वामी जी ने पूरे हीरो से लदा हुआ एक ड्रेस बनाया, उसके अंदर 1000 हीरे थे और 2 हीरो के बीच में कुछ जगह भी नहीं थी, पूरा वस्त्र जो है, पूरा अंगरखा पैजामा, पूरा पूरा हीरा का। और उसके पहले वाले पर्याव के स्वामी जी ने वज्र मुकुट बनाया था, यानी हीरे का मुकुट बनाया था, उसकी कुछ 1 करोड़ रुपए कीमत थी, वो भगवान के लिए उन्होंने अर्पण किया। और वैसे तो हीरो की कितनी मालाएं, कितने अलंकार, कितने बाजूबंद, कितने अंगूठियां, उनका कोई हिसाब नहीं है। और ऊपर से हमारे उडुपी के कृष्ण जो है ना, वो बाल रूप में है, तो उधर वात्सल्य भाव भी है, तो सभी जो आचार्य हैं वो उनका श्रृंगार जो है वो कहते हैं हमें यशोदा माता जी की प्रेरणा से करते हैं। बालक कैसे होता है ना, कभी कभी अभी वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है 15 अगस्त को, तो कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनता है, कोई महात्मा गांधी बनता है, कोई कुछ झांसी की रानी बनता है, ऐसा कुछ बनता है ना उनको, वो बीच में वो वेफर खाते रहते हैं वो फ्रूटी पीते रहते हैं उनका, लेकिन उनको बनाते हैं। तो वैसे हमारे बाल कृष्ण, उडुपी कृष्ण को हर सवेरे अलग अलग मनोरथ होता है उनका, शुक्रवार को देवी बनते वो, और उस देवी के नवरात्रि के उत्सव में मेरे पास एक फोटो आया था, वो पहले भी मैंने देखा है, पहले भी हुआ है कि कृष्ण भगवान को रुक्मिणी बनाया, इतने अलंकार पहने उसके अंदर, क्योंकि रुक्मिणी का उस दिन विवाह था ना, जिस दिन रुक्मिणी को शिशुपाल आया था विवाह करने के लिए, तो विवाह का श्रृंगार, लेकिन वो कृष्ण का इंतजार कर रही है ना, तो ऐसे लोड लेके ऐसे बैठी है पैर ऐसे करके और ड्रेस पहना हुआ है, इतने भयंकर बहुत सारे लदे हुए अलंकार है, और वो ब्राह्मण को भेजकर कृष्ण का इंतजार कर रही है, ऐसे वेश बनाया था, रुक्मिणी वेशा। फिर नवरात्रि में एक दिन सरस्वती वेशा, एक दिन लक्ष्मी वेशा, एक दिन महिषासुर मर्दिनी वेशा, एक दिन काली रूप वेशा, अद्भुत मतलब अद्भुत। और एक दिन भगवत गीता जब बताते हैं ना, क्या नाम उसका, कौन सी एकादशी है वो जो दिसंबर में आती है, हाँ मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, उस दिन सोने का चैरियट है उधर, पूरा ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है इतना बड़ा, उसके अंदर अर्जुन बैठे हुए हैं वो भी सोने के, और कृष्ण जो है उडुपी कृष्ण वो उसको उपदेश कर रहे हैं और पूरा अलंकार लदे हुए पूरे, मतलब भगवान का ऐश्वर्य जो है ना वो अनलिमिटेड है, उसको आप नाप नहीं सकते कि श्रीरंगम जी ज़्यादा श्रीमंत है कि उडुपी कृष्ण ज़्यादा अमीर है, कि अनंत पद्मनाभ ज्यादा अमीर है। उडुपी कृष्ण के बारे में ऐसी कथा है कि उनके एक साधु थे, उनका नाम क्या था मुझे अभी झट से याद नहीं आ रहे। 120 साल की उनकी जीवन था, बहुत वाडियार स्वामी, वाडी राज स्वामी 1480 से 1600 ये उनके जीवन काल है। तो उनके जीवन काल में वो एक बार हिमालय गए थे, तो हिमालय में बहुत लंबी कहानी है वो, लेकिन वो मुसलमान राजा थे, उन्होंने उनको कुछ ना कुछ बोला तो थोड़ा कष्ट दिया मुसलमान राजा ने उसको। तो उन्होंने कहा कि जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहाँ पर नीचे बहुत धन है, तो राजा बहुत हाथ जोड़ के आया तुमसे, और जहाँ पर तप करने बैठे थे उसके नीचे इतना धन निकला कि राजा उसको देख के बहुत प्रभावित हो गया। तो राजा ने वो धन, उसके राज्य में था ना वो, फिर भी वो धन साधु का प्रभाव देखकर उनको ही दान दे दिया। तो वो अभी सोच रहे हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, इतना धन का क्या करूँगा। फिर उनके मन में आया कि मैं सब कुछ लेके जाऊँगा उडुपी मंदिर में और ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा, ऊपर एक नाग स्थापना करूँगा और नाग उसकी रक्षा करेगा, और जब भी उडुपी मंदिर कभी संकट में आएगा, आर्थिक संकट में, कोई भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो उसको खोल के भोग लगा सकते हैं। तो वो मंदिर का प्रांगण है ना, उसके बीच में वो सुब्रमण्यम गुड़ी है, सुब्रमण्य गुड़ी, उसके नीचे वो अनंत धन छुपा हुआ है, और लिखे रखा है शास्त्र में, उनके किताब में, कि जब भी भोग लगाने की समस्या होगी भविष्य में कभी, तो वो नाक को निकालकर नीचे से वो धन ले सकते हैं। अभी कुछ साल पहले अनंत पद्मनाभ मंदिर के अंदर जब रेकी किया गया तो उसके अंदर इतना धन मिला है कि 5 भारत देश को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, 5, एक नहीं। यू कैन इमेजिन हाउ मच वेल्थ। और सब बहुत गवर्नमेंट ने बहुत वो उस समय के उस राज्य के गवर्नमेंट ने बहुत उसको हड़पना चाहा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। जगन्नाथपुरी के मंदिर में, जब जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाना, जिस समय बना, सत्ययुग में बना ना, बहुत पहले ब्रह्मा जी के जीवन के 50 साल पूरे होने के बाद में उनके तभी के आराध्य भगवान नील माधव जी अदृश्य हो गए, और फिर जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। फिर बहुत समय गया उसके, वो ब्रह्मा जी के पास गए, ऊपर नीचे बहुत पीढ़ियाँ निकल गई यहाँ से, तो नीचे आए तब तक तो बहुत सारी रेती समुद्र की उस पर आधे मंदिर को कवर कर चुकी थी, फिर ऊपर के आधे मंदिर में स्थापना की गई भगवान की, और यथावकाश फिर इस जमाने का, इस युग का कलयुग आया, और उसमें अंग्रेजों का राज हुआ। तभी भक्तिविनोद ठाकुर भी वहाँ के कमांडर थे, कस्टोडियन ऑफ जगन्नाथ मंदिर। तो वायसराय जो था ना, उसको पता चला कि जगन्नाथ के मंदिर के नीचे बहुत धन है, बोला जाके खुदाई करनी चाहिए उसकी। तो वो गया अपने साइंदे लेके, पूरा फोड़ने वाले लोगों को वो लेके गया, आदेश दिया खोलो उसको। तो जब खोला ना, तो अंदर से इतनी भयंकर आवाज आई कि वायसराय इतना डर गया कि उसने बोला कि इसको कुछ नहीं करना है आगे, कभी भी जिंदगी में कभी इसको खोदना नहीं, ऐसा परमानेंट ऑर्डर लेके चला गया। अभी ब्रिटिश राज चले गए, लेकिन धन जरूर देखा उसने, लेकिन ऐसा अवस्था, मतलब ऐरा गहरा कोई धन के हाथ लगाया ना, ध्वंस हो जाएगा उसका, नष्ट हो जाएगा, या तो अंधा हो जाएगा, या तो लकवा मार जाएगा, या तो डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि भगवान का धन है वो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतने भगवान के अलग अलग स्वरूप में है, और अभी भी जो भगवान की द्वारका थी, जो विश्वकर्मा ने ओवरनाइट बनाई थी, 7-8-10 घंटे के अंदर बनाई थी पूरा शहर, वो भी ऐसा जल्दी जल्दी में बनाया तो टूट गया फूट गया, ऐसा रिपेयरिंग में कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च हुआ ऐसा नहीं था, तो डिवाइन कंस्ट्रक्शन। और रातों रात मथुरा वासियों को वहाँ शिफ्ट कर दिया, मथुरा में रात को सोए और सुबह द्वारका में उठे। सुना आपने बराबर से मैं क्या बोला, जीव में सोए और अमेरिका में उठे नए घर में, ऐसा चमत्कार किया भगवान ने। और वो आज भी समुद्र के नीचे लोगों को उसके वो दिखाई पड़ता है, लंका का ब्रिज भी जमुन के समुद्र के अंदर वो सैटेलाइट से उसके फोटोग्राफ निकाले हुए हैं, टूटा हुआ, भगवान ने उसको तोड़ दिया, जब भगवान जले गए ना उसमें तो उसको तोड़ दिया है भगवान ने, तो टूटा हुआ दिखाया नीचे जमीन समुद्र के नीचे। लेकिन वृंदावन की भूमि जो है वो भी पूरी ऐश्वर्य से भरी हुई है, ऐसा नहीं कि वहां ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य से अधिक प्रभावी होता है माधुर्य, और माधुर्य जो है उसके सामने ऐश्वर्य होने पर भी दिखता नहीं है और टिक नहीं पाता है। वैसे कुछ कमी नहीं थी, यशोदा माई लुटा रही है, दही लुटा रही है, दूध लुटा रही है, मक्खन लुटा रही है, कोई कमी नहीं हो रही है। एक 9 लाख गाय ऐसा बोलते हैं, लेकिन लाखों लाखों गाय दान करते रहते, फिर भी कोई गाय में कमी नहीं आती, नंबर इज कॉन्स्टेंट। जगन्नाथपुरी में रोज 720 किलो का नहीं 7200 किलो का चावल बनता है, कितना 7200, और वो रोज बनता है, चाहे वो रथ यात्रा का उत्सव हो या ढोले यात्रा हो या और कोई कुछ भी उत्सव हो, उड़न षष्ठी हो, होली हो, बहुत उत्सव मनाते हैं जगन्नाथ जी। और आम आदमी जब आप दिसंबर में जाएंगे तो क्रिसमस में गर्दी होगी, लेकिन बीच में पहले क्रिश्चन कोई गर्दी नहीं होगी, उधर खाली होगा, और फिर भी 7200 किलो का राइस रोज बनता है। लेकिन आश्चर्य क्या है, 10,000 लोग खाएंगे या 1,00,000 लोग खाएंगे, वो चावल कभी कम नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य, इसको ऐश्वर्य कहते हैं कि कुछ भी करो आप, और किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे आज उत्सव है और 10,000 का तो बनाया था, लेकिन 1,00,000 लोग आ गए, सबको आधा आधा एक एक मुट्ठी बांटेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, नो सेकेंड सर्विस, ऐसा नहीं है, प्रचुर मात्रा में बांटते हैं खिचड़ी, कभी भी जाओ। रात को आखिरी आदमी आके पेट भर के खाने तक उसमें रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अभी ये तो आप बोलेंगे, अरे तो कहीं सुनी कहानी है, किताबों में लिखी हुई है। अब मैं मेरे जीवन में जो कहानी हुई वो बताता हूँ। मैं 2009 में जगन्नाथपुरी की यात्रा लेकर गया था, 168 लोगों को लेकर गया था पहली बार, और ध्यान से सुनिए सब लोग, हाँ आराम से सुनिए, बहुत रोचक कहानी है, और किसी ने आपको बोला तो आपको बोलने को आना चाहिए, ऐसे सुनना। तो मैं जाता हूँ हमेशा एडवांस पार्टी में, और 4 दिन पहले जाता हूँ, थोड़ा सेटल होता हूँ, फिर थोड़ा सा प्लानिंग करता हूँ, देखता हूँ सब व्यवस्था ठीक हो गई नहीं हुई, एकदम अचानक जाएंगे तो मुश्किल होता है। तो मैं जब गया था तो मेरे साथ में कुछ लोग, 15 लोग पहुँचने वाले थे, एडवांस कमेटी वाले सब लोग, और मेरा ऐसा उनको बताया था कि देखो मैं आऊँगा ना, मेरा पहला स्वागत महाप्रसाद से होना चाहिए, फर्स्ट मील शुड बी जगन्नाथ महाप्रसाद स्ट्रेट फ्रॉम द ऑल्टर। तो हो जाएगा प्रभु जी, वो पांडा बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता जी आप सुन रहे हैं क्या? माता जी सुनो, वो माता जी सुनिए, सुनने के लिए आए ना, सुनो। बहुत जल्दी उठते, शायद 2-2 बजे उठ के जपा करते, फिर कथा में सो जाते, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं आया ना, तो एक आदमी ऐसा बड़ा टोकरी लेके आया, इतना बड़ा वो आदमी, इतना तो टोकरी इतनी बड़ी, मैंने कहा अरे बहुत भरपूर लाया होगा प्रसाद। अंदर देखा तो 6 छोटे से मटके थे, तो बोला अरे ये तो मैं अकेले खा जाऊँगा, और मेरा बड़ा भाई भी है जो अपने जवानी में भोजन करने के बाद में 50 गुलाब जामुन खाता था, वो भी आने वाला है मेरे बाद, और बाकी 15 लोग है, मतलब टोटल मिलके 15 है, मैं एक, मेरा भाई एक और 13 और है। तो बोला प्रभु जब चिंता क्यों कर दे हो, आप खाओ ना, कम पड़ेगा तो और आ जाएगा, उसमें क्या है। मैं बोला उसको पता नहीं हमारी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। मैं बैठ गया, अच्छा केले का पत्ता लगा कि फर्स्ट क्लास सारे आइटम मुझे जितनी बार चाहिए उतनी बार दिए गए, मैं बहुत प्रेम से पेट घर पे गले आकंठ मैंने उसको खा लिया, और देखा कि अरे बाप रे अभी 13 लोग और मेरा भाई 14 लोग बाकी है, वो सब लोग आए और सब लोग ने भी दबा कर खाया, मेरे भाई आया, भाई ने भी दबा कर खाया, फिर भी उसमें से बचा, और हम भाइयों को सबको बोल रहे अरे खाओ खाओ अरे खाओ, मैंने बोला था कम पड़ेगा, अभी मेरे मतलब अभी क्या मुंह दिखाऊंगा उनको, खाओ। बोले प्रभु जी कितना खाएंगे, अभी अभी तो उल्टी हो जाएगी और खाएंगे। तो मैनेजमेंट को बांटना पड़ा, उनके सर्वेंट लोगों को, इतने इतने मटके थे, इतने से मटके, और दोपहर का भोग था वो शाम को आया था, फिर भी गर्म था। बोलो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो अपने लिए तो ये अच्छा है, महाप्रसाद की लीला पावर समझ में आया। अगले दिन सब लोग आए, 2 दिन के बाद 168 लोग, और उनके लिए शाम का प्रसाद जो था वो जगन्नाथ का रखा गया था, इतनी बड़ी मात्रा में। तो दोपहर का ही भोग जो है वो शाम को आएगा, दोपहर का भोग 1 बजे लगेगा, 1:30 बजे, तो बाहर निकलते निकलते 3:30 बज जाएंगे, तो 3:30 बजे कौन सा लंच होता है, या तो लंच भी नहीं डिनर भी नहीं, बीच में कभी आएगा तो वही तो आ सकता है डिनर में, तो ठीक है 7:30 को खिला देंगे उसको। तो मैं कैसा डॉक्टर और मैनेजमेंट वैसा सब सोचा था कि ठंडा हो जाएगा ना तो पचन कैसे होगा उसका, तो एक गरम गरम चटपटा क्लियर सूप बना देते हैं हाँ अच्छी तरह से हाजमा होने के लिए, और एक बाज़ार से आम का अचार बना मंगा देते हैं ताकि को खाएंगे तो अच्छा डाइजेशन होगा। तो मैंने अपने कुक को ऑर्डर दे दिया कि बना दो 200 लोग के लिए। तो ये खबर वो पांडा को पहुंच गई कि जगन्नाथ के महाप्रसाद के साथ में किचन का सूप और बाजार का अचार दिया जा रहा है। तो उसने कड़क मैसेज भेजा कि जगन्नाथ के महाप्रसाद खाने के समय कोई बाहर की वस्तु नहीं होनी चाहिए, जगन्नाथ का प्रसाद अपने आप में परिपूर्ण है, भले दाल चावल भी आ गया ना तो भी परिपूर्ण है वो, इट इज़ अ परफेक्ट प्रसाद, इट इज़ नॉट सपोज टू बी सप्लीमेंटेड बाय एनी एक्सटर्नल आइटम। तो उन्हें झट से जाकर किचन में ऑर्डर दिया, बंद करो बंद करो बंद करो, दिखाओ भी मत उसको। फिर भी मेरे मन में था वो प्रसाद ठंडा हो जाएगा वगैरह, लेकिन क्या करें अभी जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, उनका राज्य है तो उनके लिए तलना चाहिए। तो 7:30 को आया वो, तो इतने इतने मटके आए थे मेरे लिए, इतने इतने आए थे, ये इतने इतने। मैं बोला इतने मटके में 200 आदमी कैसे खाएंगे, 175 लोग हैं। बोले बाबू जी चिंता क्यों करते हैं, आ जाएगा ना और आ जाएगा, उसमें क्या है। तो हमने ऐसा लोगों को ना अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखा था कि देखो जगन्नाथ का प्रसाद की महिमा क्या है, जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ का दर्शन और जगन्नाथ का प्रसाद ये जीवन की परिपूर्णता है। एक बार जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन कर लिया दिल भर के और दिल भर के प्रसाद पाया तो कृष्ण प्रेम उसी से प्राप्त होता है, उसी से जीवन के अंत में भगवत प्राप्ति होती है। तो जगन्नाथ का प्रसाद बड़े दिल से खाना, और सब कुछ नियम समझा दिया था कि उधर पट्टा डालता नहीं है जगन्नाथपुरी का प्रसाद, ये पट्टा नहीं डालते हैं, जमीन पर बैठते हैं और एक भी कण तो छोड़ते नहीं है, और साथ में कुछ बाहर की चटनी अचार नहीं खाते कोई, सब कुछ समझा दिया था उनको। और बोला था कि दिल भर के खाना है, ऐसा नहीं कि कंजूसी करना, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रसाद है। और मेरे मन में धाकधुक थी कि कम पड़ेगा कम पड़ेगा, लेकिन बताया था मैंने किसी को कम नहीं देना, जब देते रहो आराम से हम और मंगाएंगे, एक आध बैच को रुका के और मंगा के खिलाएंगे। क्या बताएं आपको, 168 लोग में ऐसे तगड़े लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने ऐसा, हमने खुद वहाँ खड़े होकर लोगों को सर्विस किया, खाओ अरे खाओ, लोग दो तीन तीन बार आए सर्विस लेने के लिए, और बाद में हम जाने लगे तो बोले प्रभु जी बस प्रभु जी बस प्रभु जी बस। और इसके बाद भी रोज शाम को प्रसाद बहुत सारा बचा, वो सेम साइज़ के पाउडर दे दे, और रोज शाम को बढ़ता प्रसाद बचता था और हम लोग रेस्टोरेंट में लोगों को बांटते थे। तब मैं समझ में आया कि ये सब साधारण चीज़ नहीं है, जगन्नाथ जी का प्रसाद ये संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न वस्तु है। तो ये सब धाम में चलता है ऐश्वर्य का प्रदर्शन, लेकिन वृंदावन धाम में कुछ ऐश्वर्य प्रदर्शन करेंगे ना तो वही लुप्त हो जाता है, वो होता है लेकिन वो वहां पर टिकता नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम का प्रभाव है। और ऐश्वर्य के साथ में जो चीजें रहती हैं, फॉर एग्जांपल भगवान के चार भुजा रहती है, नो चार भुजा इन वृंदावन, शंख चक्र इनको वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, गरुड़ जी को वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, जो जो आप कहेंगे रथ 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 से अक्रूर जी आए थे और उद्धव जी भी आए थे, लेकिन भगवान कृष्ण कभी रथ पे नहीं बैठे, बैलगाड़ी में बैठे रथ में नहीं बैठे कभी। सादगी, वो सादगी में भी एक प्रेम का ऐश्वर्य होता है, जो आंखें चकाचौंध कर देता है वो एक ऐश्वर्य अलग होता है, और हृदय का ऐश्वर्य जो है वो प्रेम माधुर्य वो अलग तरह का होता है, उसके सामने कोई भी ऐश्वर्य टिकता नहीं है। अभी ऐश्वर्य की बात करें, हम लोग तो था ना ऐश्वर्य, भगवान ने वो मोती से मोती नहीं उगले क्या, अरे जमीन से मोती उगले, मोती तो समुद्र में नीचे वो होता ना सिंपला, क्या बोलते हैं उसको, शेल, शेल के अंदर होता है वो, हाँ तो उधर किधर वृंदावन में समुद्र है। तो भगवान ने उसका खेती किया जमीन के अंदर, मट्टी से उगाया उसको, और राधा रानी उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न है, उसने वही मोती लेकर बोए और हीरे निकाले। देखो आप, राधा रानी का जन्म जब हुआ ना तभी एक तो गरीब बेचारे लोग थे ना घर पे भिक्षा मांगने वाले, कभी एकदम गरीब होते, राधा रानी का जन्म होते ही उनके झोपड़ी में अन्न के भंडार भर गए, हलवा पुड़ी मिठाई सब कुछ भर गया, हाँ भूखो राम धनी राम है गो भूखो राम धनी राम है गो, ऐसे वर्णन दिया गया है, सब के सब धनी हो गए, इतना धन था। वृषभानु महाराज का, क्योंकि राधा रानी तो भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है ना वो। तो वृषभानु महाराज ने एक भंडार खोला मोतियों का और सब साधुओं को मोती बांटे, जितने चाहे उतने ले लो। तो ऐसे भर भर के ऐसे धोती में ऐसे भर भर के लेके जा रहे हैं, उतने में अनाउंसमेंट हो गया कि भी हीरे का भंडार खोल दिया है। तो उन्होंने वो डाल दिए नीचे उधर ही जमीन के अंदर, गए हीरो का भंडार लेने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, अभी सब जगह जमीन पर मोती ही मोती है, क्योंकि सब लोगों ने मोती लिए थे वो उधर ही फेंक दिए। अभी जो लोग अभी साधुओं के लिए मोती कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन इतना ऐश्वर्य वहाँ प्रकट हो रहा है तो वो मोती भी क्या फेंक दिए उन्होंने। हीरे लेने गए तो बोले वापस ऐसे हीरे भर के आए, और कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि अभी वो है ना पासू मतलब क्या, एमेराल्ड जो ग्रीन रंग का क्या होता है, ग्रीन रंग का हरे रंग का होता है, एक ब्लू रंग का होता है सैफायर नीलमणि होता है, एक होता है हरे रंग का पासू। हाँ बहुत सारा कोरल है उसके अंदर, पोड़ा है, बहुत सारे अलंकार है, पन्ना हीरा पन्ना मोती क्या क्या है। तो एक एक खोल के गए, एक एक भर भर के बांटते गए, दूसरा अनाउंसमेंट किया, सब लोग वहाँ डाल के गए। तो बोलते पूरे बरसाने में पूरे ब्रज में सब जगह पर चक 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 अलंकार चमक रहे थे रोड पे, और कोई लेने वाला नहीं है, बोलो सब लोग ले रहे और फेंक रहे। जब बहुत सारा होता है, समझो आपको मैंने जो 1000 लीटर गाय का दूध दे दिया तो अचानक आप दानी बन जाएंगे, फिर आपने पेट भर के लिया, कुछ दही जमाया, कुछ उसका बर्फी बनाया, कुछ बनाया, फिर भी 500 लीटर बचा, 750 लीटर बचा, तो क्या करेंगे, अरे किसी के मुंह तो लगेगा तो आप सब बांट देंगे। तो अचानक प्रभु जी जो कंजूस थे वो एकदम दानी हो गए। ऐसे ब्रज में अवस्था हो गई, बोलो राधा रानी के जन्म के अवसर पर। तो ऐसा नहीं कि उधर ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य का प्रभाव होता है। एक आपके पास बहुत धन आया तो आप पहले ऐसे थे, एकदम ऐसे हो जाएंगे, गले में 50 माला ऐसे आ जाएगी, इधर एक आ जाएगा, थोड़ा सा चमक चमक आ जाएगी आपके अंदर, और एक आपका छाती में हवा ज़्यादा रहेगी, है ना। वैसा प्रभाव ब्रज में ऐश्वर्य होने पर भी नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐश्वर्य का होना ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐश्वर्य होने पर कितना उसका गर्व करते हैं आप वो इम्पोर्टेंट है। और धन का गर्व होगा ना, आम तरह पे सबको धन का ही गर्व होता है, उसके बाद विद्या का गर्व होता है, उसके बाद सुंदरता का गर्व होता है, उसके बाद कोई एकदम काला कलूटा होगा लेकिन बड़े पावरफुल पोजीशन में बैठा है उसको उसका गर्व होता है एकदम बाल टेढ़े मेढ़े, नाक भी टेढ़ा मेढ़ा, दांत भी टेढ़े मेढ़े और काला कलूटा, लेकिन ऐसा पोजीशन में बैठा है कि सब लोग सलाम ठोकते हैं उसको। ये सबका गर्व होता है मटेरियल वर्ल्ड में, पर वृंदावन धाम में भगवान जो सबसे पावरफुल आदमी है, भगवान के ये सब बहुत आदमी को है क्या, सौंदर्य में बोलो अनंत सौंदर्य, अनंत धन संपत्ति, सब चीज़ के मालिक एक व्यक्ति है, और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, सब ज्ञान उनकी तरफ से आया हुआ है, कितनी पावर है भगवान के अंदर, ज्ञान बुद्धि अनंत मात्रा में है, तो उनको कितना गर्व होना चाहिए। हम लोग अगर समझो एक मिनट के लिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट समझ सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, ऐसा समझो कि मैं ब्लू रंग का हूँ और सब जगह घूम रहा हूँ, सब ब्राह्मण देव ऋषि मेरे सामने श्लोक गा रहे हैं स्तुति के लिए, कितना अच्छा लगेगा। उस अच्छा लगने के लिए तो हम लोग यहाँ पर आते हैं भगवान बनने के लिए, लेकिन वो भगवान जिनके सामने वैकुंठ में ऐसे हजारों देव ऋषि हमेशा गीत गाते रहते हैं स्तुति गीत, वो यहाँ पर ना नंगे पैर ऐसे आके राधा रानी के सामने ऐसे हाथ जोड़ते, प्रेम की रति की भीख मांगते, रति का दान मांगते, प्रेम का दान मांगते। दानगढ़ में ऐसा ही लीला है, वो परात्पर भगवान त्रिलोकेश्वर गौलोकेश्वर वैकुंठेश्वर पूरे ब्रह्मांडेश्वर आप गिनती जाओ क्या क्या बोलेंगे उनको आप। वो भगवान जो है वो उधर लट्टू होकर राधा रानी के सामने भिक्षा मांग रहे हैं, और राधा रानी ललिता को भी डांट रही है उनको, ये कुछ शर्म नहीं आती है, कहीं पब्लिक में आकर कुछ भी करते रहते हो, थोड़ा शर्म तो क्या कर, कोई बाबा ने कुछ सिखाया नहीं, नंदगांव में कोई रिवाज नहीं सिखाया, कोई मर्यादा नहीं सिखाई, नंदगांव वाले ऐसे ही होते सब बिना मर्यादा वाले, फिर पीछे पीछे भाग रहे हैं। अगर आपको समझेगा कि ये व्यक्ति कौन है तो हमको पता चलेगा कि अरे इतना ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी प्रेम के ऐश्वर्य की भिक्षा मांग रहे हैं। प्रेम का राज्य जो है ना ऐश्वर्य के राज्य से बड़ा होता है बहुत, वहाँ ऐश्वर्य की वैल्यू नहीं होती है, ऐसा है। तो ऐसा वृंदावन धाम है। भगवान ने चार भुजा वाला रूप धारण किया ना, लेकिन भगवान के इच्छा और नियंत्रण के अगेंस्ट विरुद्ध उनकी दो भुजाएं निकल गई और चार जो थे ना शंकर चक्र पद्म गदा विष्णु वाले ऐश्वर्य वाले चिन्ह वो भी गायब हो गए। और मुरली उन्हें त्याग दी थी वो भी उनके हाथ में आ गई, दोनों हाथ मुड़ भी गए और मुरली बजाने भी लगे। अपने नियंत्रण के विरुद्ध है सब कुछ, ये ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इसका मतलब क्या, उनके ऐश्वर्य के ऊपर प्रेम हावी हो रहा है और प्रेम ऐश्वर्य को परास्त करके चितपट करके नष्ट कर रहा है, वो भी भगवान का ऐश्वर्य, बाकी लोगों का ऐश्वर्य नहीं। तो इसलिए साधु लोग कहते हैं कि ब्रज में कभी भी अपने शहर का रजोगुण तमोगुण लेकर मत जाना, डोंट कम हियर विथ रजोगुण तमोगुण, थोड़ा छोड़ के आया करो अपने रज कि मैं कौन हूँ और कितना पढ़ा लिखा हूँ, क्या मेरा पोजीशन है वगैरह वगैरह। अगर मंत्री संतरी भी आ गया ना तो हो सकता है वो सिक्योरिटी गार्ड लेके आएगा, लेकिन वो मूड में नहीं आना चाहिए उसको कि मैं मंत्री हूँ, क्योंकि हमारे ब्रज के संत लोग हैं ना उनको फटकार देते हैं पूरा, ऐसा बुरा भला कहते हैं कि वो भी आगे पीछे देखने लगे कोई सुन तो नहीं रहा है क्योंकि डरते नहीं ब्रज के लोग। क्यों नहीं डरते हैं, डरता कौन है बताइए? डरता वही है जिसको दुनिया में किसी वस्तु से आ सकती है, और कोई डरता नहीं है। और हम सब डरते हैं क्योंकि हमारे को परिवार से आ सकती है, हमें धन से आ सकती है, अलंकार से आ सकती है, प्रॉपर्टी से आ सकती है, अपने पोस्ट से आ सकती है, जो भी छोटा मोटा है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उससे आ सकती है। तो वो कहीं छीन ना जाए इसलिए वो आदमी डरा रहता है। गरीब आदमी होता है ना, जो फटीचर आदमी होता है ना, वो रास्ते में ऐसा टोकरी उल्टा करके टकिया बना के सो जाएगा, ऐसा सोएगा कि 10 लात मारेगा तो उठेगा नहीं, वो उसको चिंता नहीं है कि कोई पॉकेट मारेगा उसका, पॉकेट में कुछ है ही नहीं तो क्या मारेगा पॉकेट। डर किसको रहता है, तुम्हारे जेब में यहाँ पर 4 सोने के कॉइन, यहाँ पर 5 हीरे की अंगूठी रहेगी, और तुमको रस्ते पे सोने का, जब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बेंच पे सोने का मौका आया तो आप रात भर सोएंगे नहीं, आप बैठे रहेंगे ऐसे, क्योंकि इधर ऐसा पकड़ के बैठेंगे ऐसा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, जबकि आ गए तो हाथ में ऐसा पकड़ के बैठेंगे। क्यों क्यों नींद नहीं आ रही है, नींद तो बहुत आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि वो उसकी चिंता है कि कोई ले जाएगा इसको, है ना। तो भय उसी को होता है जो किसी भी भटी मटीरियल चीज से आसक्त नहीं है, उसको भय नहीं रहता कभी। तो हमारे रमेश बाबा जी महाराज 12 साल की उम्र में घर छोड़ के बरसाने आए थे। मैं बता रहा हूँ निर्भय आदमी कैसे बनता है। तो मान मंदिर में रह रहे हैं, मान मंदिर उसमें डाकुओं का अड्डा था, अभी 100 साल के पहले की बात है, उनको आके अभी 60-65 साल हो गए हैं। उसके पहले मान मंदिर, जो मान मंदिर गढ़ था ना, पहाड़ जो ब्रह्मा जी का एक मुख माना जाता है, वो पूरा ऐसे निर्जन जगह थी, वो सांप वाप शेर वेर आते थे उधर, गुफा भी है उधर जहाँ मान करने के लिए राजा रानी बैठती थी मान करके, वो गुफा भी अभी उधर है। तो ये वहाँ पर जाके बस गए, उनको क्या है जंगल में चित्रकूट में घूमते थे अकेले, उधर भी जंगल में आके बैठ गए, उनको तो एकांत चाहिए था। तो डाकू अलर्ट हो गए एकदम, क्योंकि वहाँ पर आते थे डाकू, अपना चोरी हुआ माल रखते थे, बांटते भी थे, चर्चा दारू वगैरह सब पीते थे। तो उनको लगा ये तीसरा आदमी कौन आ गए, तो डाकू तो नहीं ये, तो उसको ढमकाने के लिए आ गए, हे चले जाओ बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। बोला वो तो बैठा रहा, कुछ बोला नहीं रहा। बाबा बहुत कर रहा बाबा है, डराना चाहिए। तो बंदूक लेके आए, ऐसा तान लिया छाती पर, मतलब गोली से उड़ा देंगे। तो क्या बोला उन्होंने, शांत ऐसा, मतलब इतना सब बकबक करते जा रहे हैं, आप मालूम है डाकू कैसे बात करते हैं, बहुत भयंकर बात करते हैं, वो निर्दय होता है ना, बहुत क्रूर होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कठोर वचन उन्होंने सुनाए उनको, जान से मार डालेंगे कई बार बोला, तो ऐसा निर्विकार, मतलब चेहरे में कोई दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा निर्विकार चेहरा। मतलब क्या हो रहा है, बहरा अंधा पागल क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत देर उन चिल्लाने के बाद में बाबा उनको बोले, अरे मरने के लिए तो आए हैं। क्या बोलेगा आदमी बताओ, सबसे अधिक डर तो मृत्यु का होता है ना आदमी को। आप बोलेंगे लूट लेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, तुमको ऐसा करेंगे, कर लो, लेकिन मार डालेंगे बोले तो डर लगता है ना, जिंदगी से आ सकती है। तो बोले मरने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ऐसा नहीं कि डायलॉग मार रहे हैं, उनको दिल से बोल रहे हैं। अरे वो चले गए वहाँ से बंदूक लेके। बोले जो मरने को डरता नहीं है उसको हम क्या डराएंगे। और कुछ दिन बाद में डाकुओं का डेरा भी वहाँ से शिफ्ट हो गया, और बाबा जी महाराज का पार्षद लोग वहाँ पर आके बैठने लगे। अभी जाके देखो आपको यकीन नहीं आएगा कि वहाँ पर डाकुओं का अड्डा था। अच्छा आश्रम बनाए, मंदिर बनाए, बहुत बढ़िया गुफा बना करके सजा के रखी है, सब लोग भजन करते हैं उधर, रात को नाच होता है, कोई डाकू वाकू नहीं है वहाँ पर अभी। तो जब वृंदावन धाम का वैशिष्ट्य क्या है, लोग ना ऐसे फकीर फकीर होने के लिए वहां पर आते हैं। जैसे कितनी कहानियां हैं, कितनी कितनी कहानियां हैं, एक कहानी नहीं है। हमारे घनश्याम बाबा का उल्लेख हमारे महाराज जी करते हैं, वो घनश्याम बाबा वृंदावन में आए थे ना, तो घनश्याम ये बच्चा था, बालक था, वो एक संस्थानिक का राजा का पुत्र था। वो एक जमाने में अंग्रेज आने के पहले भारतवर्ष पर संस्थानिकों से भरा था, छोटे छोटे ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब चार शहर मिलकर एक संस्थान, उसका एक राजा, उसका पूरा रानियाँ, उसके सब कुछ, सैनिक, घोड़े, किला विला सब हुआ करता था। और ऐसे बहुत सारे हुआ करते थे भारतवर्ष में, पचासों सैकड़ों राजा थे ऐसे। तो ऐसे ही एक राजस्थान के संस्थान का राजा का पुत्र था वो। ऐसे ही घूमते घूमते ब्रज में लीला करने, मतलब यात्रा करने के लिए आए थे। तो ये राजपुत्र मतलब आगे जाके राजा बनेगा ना, तो इट्स नॉट ऑर्डिनरी बॉय। तो बोला बाबा मैं घर पे नहीं आऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। तो बोला तुम राजपुत्र हो, तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो, कुछ दिन रहो, हम भी रहेंगे आपके साथ, थोड़ा दिन आनंद ले लो, फिर चलेंगे हम लोग, क्या करना है तुमको। मुझे यहाँ ही रहना है। उनको लगा जमुना जी में स्नान करने का बाकी रहेगा होगा, या जमुना जी में बोटिंग करने का बाकी रहेगा होगा, कुछ सारे परिक्रमा करने के बाकी होगी होगी, या गोवर्धन जाके आना होगा, या बरसाना नंदगांव देखने का बाकी, मतलब उसको अभी संतुष्टि नहीं हुई है। तो ठीक है, तो कहते हम भी रहेंगे। नहीं नहीं आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। उनको लगा कुछ दिन के बाद आ जाएगा, दोबारा आ गए वो लेने के लिए, तभी भी नहीं बोल रहा है, उधर ही रह रहा है वो। ऐसा नहीं कि भाई अभी यहाँ मिला तो बाद में गोवर्धन में मिला, ऐसा भी नहीं। अभी वृंदावन के वातावरण की शक्ति ऐसी है ना, आज आपको नहीं दिखेगा ऐसा, क्योंकि आज इतने संत भी ऐसे रहे नहीं जो उस प्रकार के विरक्ति को फैलाने वाले संत नहीं रहे ऐसे आजकल, बहुत विरला हो गया। आपको पता होगा तो आप जान जाके मिल सकते हैं, लेकिन वो खुली हवा में कभी आते नहीं, क्योंकि वो मालूम है सब रजोगुण के ये सब आवाज़ में कौन जाएगा। तो पानी घाट में, कभी उधर भांडिर वन के जंगल में, जमुना जी के जंगल में आपको साधु मिलेंगे अकेले रहते हुए, पक्कड़ साधु, कोई नहीं उनको, आजकल धन नहीं, कुछ नहीं, खाने की व्यवस्था भी नहीं, भगवान भरोसे रहते हैं, और कोई भूखा रहता नहीं, हर रोज को हर आदमी को रोटी आ जाती है, दूध आ जाता है, सब आ जाता है, क्योंकि भगवान का वादा है ना उनको। भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया, कितने साधुओं को दर्शन दिया है, माधवेंद्र पुरी को दिया, सनातन गोस्वामी को दिया, कितने संतों को दिया। अरे बोलते यहाँ ब्रज में आके तुम लोग भजन करते हो, भिक्षा नहीं मांगते हो, कितने दिन से भूखे हो, उनको मैं आके दूध पिलाता हूँ, भगवान का वादा है वो, तो कोई भूखा नहीं जाता है उधर। तो ये व्यक्ति इतने मतलब भिक्षुक से भी भिक्षुक बन के वहां पर रहे जीवन भर, राजा बनने वाला व्यक्ति। तो इतना धन का ऑलरेडी आपके पास गुंजाइश है, तो फिर भी भिखारी क्यों बनते हुए लोग, क्योंकि वो धन से भी ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न और आकर्षक कोई चीज है जो उनको मिल गई है, इसके वजह से वो धन के ऊपर देखते भी नहीं मुड़ के। अकबर की बीवी थी ताज बीवी, वैसे ही उन्हें बहुत सुना, रहे क्या ये कृष्ण कृष्ण सुनते सब लोग पागल हो रहे, वृंदावन नाच रहे, दिन रात गाते रहते उसके पीछे। एक बार जाके देख के आते, तो बोट से आई वो जमुना जी से और वृंदावन में उतरी, और बांके बिहारी के मंदिर में जाकर इतनी पागल हो गई, कभी लौट के ही नहीं गई वो, फक्कड़ संत बनी एकदम। कितने पद है उसके, रानी पद छोड़ दिया, एक एक स्त्री ने, जिसको आमतौर पे अलंकार वस्त्र सबके आकर्षक होते हैं सब, वो ताज बीबी वृंदावन के वातावरण में आते ही ऐश्वर्य को छोड़ दिया उसने और वहीं रह गई। ऐसे कितने संत लोग हैं जो धन से बहुत समृद्ध थे, तो क्या चीज है ऐसी, वो त्यक्त्वा देह त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। कृष्णदास कविराज छाइल गोस्वामी लिखते हैं, या जिन्होंने लिखा है गोस्वामी अष्टक, उसमें क्या लिखा है कि ये गोस्वामियों के पास में अपार धन था, अपार। रघुनाथ भी राजपुत्र थे और 500 साल पहले उनके घर पे 12 लाख सोने की मोहरे पर मंथ इनकम था। 12 लाख सोने के मोहरे क्या होते हैं पता है आपको? आज के तारीख में उसको करो, गिनती करो उसकी। एक सोने का कोना कॉइन जो है वो 10 ग्राम का पकड़ेंगे तो 12 लाख सोने का कितना वजन हो गया, और उसको मल्टीप्लाई करो आज के रेट से, तो एक महीने का इनकम था वो। ऐसा घर में राजपुत्र था वो, और उसको राज्य में, अधिकार में, सोने के कॉइन में, ब्यूटी में, किसी में इंटरेस्ट नहीं। तो माँ बाप बोले अरे इसको अच्छा लड़के से विवाह करना चाहिए, सौंदर्यवती से। तो सौंदर्यवती आई लड़की, सद्गुण संपन्न भी और सौंदर्य संपन्न भी, दोनों साथ में कभी होता नहीं, क्योंकि सौंदर्य होगा तो बहुत गर्व होगा, तो सद्गुण संपन्न तो नहीं होगी, और सौंदर्य होगा तो सॉरी धन होगा तो सौंदर्य होगा, ऐसे नहीं होता है। ये दोनों में ऐश्वर्य संपन्न थी, देवी थी, देवी साक्षात पतिव्रता नारी थी, इतनी सुंदर थी कि देवता भी उसको ईर्ष्या करेंगे, ऐसी थी। उसमें भी उसका मन नहीं लगा, उसको बांध के रखते थे। तो माता पिता क्या बोलते हैं, मैया बोल रही है अरे क्या उसको भी पहरेदार रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं अरे जिसको इतनी देवी समान पत्नी बांध नहीं सकी तो कौन सी दरवाजे रोसी सरसी से उसको बांध कर रखेंगे तुम। जो महाप्रभु चैतन्य के प्रेम माधुर्य में रममाण हो गया है, आकर्षित हो गया है, उसको कौन सा दोष रस्सी से बांधोगे तुम, कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ऐसा राजपुत्र होने पर भी जब ब्रज में आए ना, ब्रज में तब तो भले तो ठीक थे, राजपुत्र के तरह कपड़े तो कम से कम पहनते थे, लेकिन जब ब्रज में आए ना क्या कहें आपको, 3 दिन में एक बार, इसको कहते हैं चुल्लू, हम कहते हैं चुल्लू पर पानी में मर जा, उसका मतलब चुल्लू कहाँ से आया, ये इसको कहते हैं चुल्लू। और चुल्लू का एक अर्थ ऐसा होता है कि जितना दही आपको दूध को दही बनाने के लिए जमाने के लिए लगता है उसको चुल्लू भर बोलते हैं, जितना डालने पर वो दूध का दही हो जाएगा, उतना चुल्लू भर छाछ 3 दिन में एक बार पीते खाते थे वो। और वो भी 3 दिन में एक बार जो खाने का समय आता था ना, लंच टाइम, एक चुल्लू भर छाछ का, तो खुद को गाली देते 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 खाते थे वो कि मैं कितना बड़ा इंद्रिय भोगी हूँ, इतना खाता हूँ मैं। हम लोग बोलेंगे ऐसे 10 ग्लास हम घटाघट पी जाते हैं और भोजन के बाद, क्यों? क्योंकि ब्रज के माधुर्यमय वातावरण का प्रभाव है वो। वो जो थे सनातन रूप गोस्वामी, उनके पास कहते हैं, आपने कभी हवाई अपना बोट देखा है, बोट कभी विक्रांत बोट देखे आपने? चार चार बिल्डिंग रहते हैं उसके अंदर, चार चार आठ आठ मंजिल की बिल्डिंग उसके अंदर रहती है, कभी कभी हवाई जहाज हवाई अड्डा भी होता है उसके अंदर, और विमान भी उड़ते हैं उसके अंदर। ऐसे बोट में बोट भरकर गोल्ड कॉइन थे उनके पास, कितने होंगे गोल्ड कॉइन, कितने करोड़, कितने अब्ज होंगे, ऐसे बोट लोड थे उनके पास। वो तो धन था, अधिकार कितना था, एक अर्थमंत्री था, एक प्रधानमंत्री था, नहीं पावर थी, पूरा कंट्रोल था उनके पास। लेकिन त्यक्त्वा तूर्णम अशेष, मतलब एक तृण के पत्ते के समान उसको त्याग दिया उन्होंने। क्यों, क्या करने के लिए? ब्रज में जाकर लंगोटी पहन के भिक्षा मांगकर पेड़ के नीचे रहने के लिए। तो आप बोलेंगे वो ब्रज के पेड़ के नीचे लंगोटी पहनकर क्या है, उधर कौन सा धन है जिसके लिए सब कुछ ना छोड़ के जा रहे हो? कुछ तो होगा ना, जिसको पाने के लिए ये सब छोड़ के गए वहां पर। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, मंडलपति मतलब क्या, वो मंडलपति राजा थे, वो राजा के समान थे, मंडलपति के समान ऐश्वर्य संपन्न थे वो, लेकिन ब्रज में ना वो उसके परे कुछ आनंद और कुछ धन संपत्ति है। इसके लिए धनी लोग वहां पर आकर एकदम ऐसे विरक्त हो जाते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ दिखावा नहीं, अरे ये उसको भी हो गया इसको भी गया। एक लाला बाबू थे, लाला बाबू वो भी राजा थे, उधर आके फकीर बने वो, और बाद में राजा जो था ना, राजा अपने अपने अधिकार में तो वो 50 मंदिर बांध सकता है ऐसे ऑर्डर देके, इतना धन हुआ करता था उस समय राजाओं के पास। तो ये राजा वहां जाकर फकीर बना, और उसके मन में बाद में आया कि मंदिर बनाना चाहिए, तो भिक्षा मांग मांग के मांग मांग के मांग मांग के वो मंदिर बनाया। यहां तक कि राजा जब थे वो, तभी उनका एक और राजा से दुश्मनी थी, और ये उसको परास्त करते थे युद्ध में वगैरह, ऐसा ऐसा शत्रुत्व था उनका। उसके पास जाके भी धन मांगा उन्होंने, और वो धन लेकर उन्होंने, मतलब कैसा है ना, वो कहते धन दूंगा लेकिन वो आ जाए मेरे पास आएगा तो मैं दूंगा उसको, अपमान के रूप में। तो भगवान ने उनके अहम की भी परीक्षा ली कि मेरी सेवा के लिए दुश्मन के पास जाके भी धन मांग सकते हो। तो गए उनके पास, धन मांगा, वो भी इनका भक्त बन गया फिर इतनी नम्रता देखकर। तो इतनी नम्रता, इतनी विरक्ति कैसे आती है ब्रज में? क्योंकि ब्रज में प्रेम का साम्राज्य है, माधुर्य का साम्राज्य है। उसमें एक बार हम चलेंगे ना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो था ना नरवाहन राजा, पूरे वृंदावन को लूट लूट कर वो जमीन हड़प के राजा बना था वो। उसके पास बहुत धन था, चोरी का था, लूटमार का था, लेकिन बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था वो। घोड़े पे बैठ कर पूरा मोतियों के अलंकार पहनकर निकल गया था वो। लेकिन जैसे ही हित हरिवंश महाराज के वातावरण में आया, वो प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं उसको, ऑरा उसके अंदर जब आया ना, तो सबको उतार के फेंक दिया उसने। मुकुट फेंक दिया, वो मणि फेंक दिए, जूता फेंक दिया, सब फेंक दिया। और वह तक वहां उनके पास पहुंचा तो केवल कोपिन में बच गया था वो। फिर कोपिन में ही रहा उसके बाद में, सारा चरणों में चरणागति स्वीकार कर ली, राज्य सब कुछ छोड़ दिया, एक झटके में छोड़ दिया, राज्य ऐश्वर्य धन दौलत अपना चोरी का पेशा सब छोड़ दिया और जाके महाराज के पास नतमस्तक हो गया। फिर भी राजा था वो, उसका भूमि उसकी थी। लोगों को लगा वो राजा मर गया, जंगल में कोई शेर ने खा लिया उसको, दूसरा योग्य आदमी को राजा बना दिया। और वो उनकी चोरी चालू हो गई। फिर उनकी एक स्टाइल थी, मतलब उनकी एक स्टाइल थी, किसी को लूटते थे ना तो उस लूटने वाले के, मतलब लूट कर उसको पूरा धन दौलत लूट कर उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा उल्टा पेट को लटकाते थे और जाते थे निकल कर। हर एक चोर का अपना एक स्टाइल होता है। तो तभी ये व्यक्ति जो है साधु नरवाहन बनकर वृंदावन में घूम रहा है, विरक्त होकर घूम रहा है भजन करते हुए, और वो व्यक्ति को किसी ने लूटा, इसके ही सरदारों ने लूटा और उसको पेड़ में बांध के छोड़ दिया उसको, चले गए। वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक बुढ़िया आई वहाँ से, बोलते क्यों चिल्ला रहे हो, बोले देखो क्या अवस्था हो गई मेरी। बोले बचाओ बचाओ मत बोलो, नरवाहन नरवाहन बोलो, वो रात को गश्त लगाते रहता है, वो आपको आके बचाएगा। तो उसके बदले में नरवाहन नरवाहन चिल्ला, नरवाहन बोला मेरे को कौन पुकार रहा है। ढूंढ ढूंढ के आवाज़ के पीछे गया तो देखा, जैसे ही देखा ना समझ गया कि मेरे आदमी ने उसको लटका के रखा इधर। उसको उतारा, चल मेरे साथ, सीधा लेके उसको अपने राज्य में लेके गया जहाँ पर पहले रहा करता था, उसका सिंहासन वगैरह था। तो दरबार में अचानक लंगूटे वाला आदमी पहुँच गया एक आदमी को लेकर, तो सब दंग रह गए, अरे तो राजा है हमारे, आप जीवित हो? हाँ, सब दंडवत करने लगे क्योंकि बहुत पावरफुल थे वो। तो बोले इसका सारा धन लौटा दो, उसको राज वस्त्र पहना दो, उसको पालकी में बिठा के सारे धन के साथ में अपनी तरफ से थोड़ा भेंट दे के घर भेज दो उसको। मतलब पावर अभी भी है लेकिन नम्रता आ गई, अभी पावर में कोई अधिकार दिखाने का कुछ काम नहीं। जहाँ पर सेवा करने का मौका मिला ब्रज में आए ब्रजवासी किसी यात्री को, तो कर दिया अधिकार का उपयोग। फिर और विरक्ति आ गई। तो एक दिन हित हरिवंश गोस्वामी को क्या बताया, महाराज मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन था, अभी भी है, ये पूरा वृंदावन मेरा ही है, मैं आज सब आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा इसका, क्योंकि जब माधुर्य का प्रभाव होता है ना तो सब चीज़ बेकार लगने लगती है। ये अलंकार का क्या करूँगा, ये पद का क्या करूँगा, ये घोड़े गाड़ी इसका क्या करूँगा। अब हर चीज़ जो लोगों को अच्छी लगती है वो आपको एकदम अच्छी लगने लगती है। तो मैं एक जगह पर जमुना किनारे खड़े रहकर बाण मारूंगा, तो मेरा बाण जहाँ तक जाएगा वो सब भूमि आपको दान कर दूंगा। तो बाण मारा, पूरा ब्रज नाप लिया उस बाण ने, तो हरिवंश को दे दिया। इसलिए वो जमुना जी के पार जो राधा रानी का मंदिर है ना मानसरोवर के पास, मानसरोवर भी राधा रानी का मंदिर भी राधा वल्लभ जी के गुसाइयों के अंडर है आज भी। और जमुना किनारे में जितना जगह है ना, उधर देखो जुगल किशोर का मंदिर है, किसी घाट के पास एक लाल मंदिर खड़ा है जुगल किशोर जी, वो हरिराम व्यास जी जो हित हरिवंश के शिष्य थे उन्होंने वहाँ पर जुगल किशोर जी का स्थापना किया था, वो सब राधा वल्लभ जी के अंडर है। क्योंकि राधा वल्लभ जी के आचार्य हित हरिवंश जी के ये नरवान डाकू ने उनको सब कुछ दान में दिया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वृंदावन धाम माधुर्य धाम है, इसका मतलब ऐश्वर्य नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐश्वर्य है लेकिन वो टिकता नहीं वहाँ पर, दबा रहता है हमेशा। वजन प्रेम का इतना है कि ऐश्वर्य को ऊपर आने को चांस ही नहीं मिलता है, ऐसा है। और वृंदावन की क्या विशेषता है कि सभी भक्त लोग जो है वो सभी पंडित हैं वहाँ पर, सारे ग्वाल बाल, संगीत में पंडित, वेद में पंडित, आप जो पूछो सब में पंडित है वो। लेकिन कभी दिखाते नहीं पांडित्य अपना, कभी श्लोक झाड़ते रहते नहीं कभी भी, हमेशा खाली कृष्ण के लिए क्या अच्छा था वही करते रहते, है ना। अभी एक ऐसी गांव है उसका नाम है गानबन, क्या नाम है, गानबन मतलब गायन, इसका और एक नाम है गिडो, एक नाम है गेंदोवा बहुत सारे नाम है एक ही गांव के, गिडोह और एक नाम है गेंदोवा, क्योंकि भगवान वहाँ गेंद खेला करते थे नंदगांव के पास में, तो नाम करा गेंदोवा। और गानबन क्यों, क्योंकि वहाँ पर ग्वाल बालों की संगीत की गोष्ठी हुआ करती थी। ये समझ के नहीं कि हम सब संगीत के पंडित हैं और हमारी सभा यहाँ हो रही है, आइए सब लोग हमारी सभा में, ऐसा नहीं, ऐसे ही खेल खेल में आके बैठ के गा रहे हैं। और क्या कहें, उसका वर्णन इतना सुंदर दिया है कि ये लीला जो है ना, इसका वर्णन ऐसा दिया है कि ब्रह्मा जी ने जब ही बछड़े चुराए तभी ये ग्वाल बाल को भी चुराया ना उन्होंने, अभी अंदर की बात है, ये बाहर की बात भागवत में दी, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको अंदर की बात क्या है कि वो ग्वाल बालों को जो चुराया ना उन्होंने, वो उनको ले जा रहे हैं ब्रह्मा लोक में बंद करने के लिए। तो ग्वाल बाल क्या सोच रहे हैं, ये ब्रह्मा जी को मजा चखा दे क्या, जरा क्या समझते हैं अपने आप, उनको उड़ा के ले जा रहे हैं। अभी ऐसा छलांग लगाते हैं ना कि पूरा ब्रह्मा लोक तक पहुंच गए थे वो, तब तक तो ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक को छलांग लगाते हैं, ब्रह्मा लोक को पूरा पृथ्वी पर ढसा देंगे, हमारे ब्रज के अंदर घुसा देंगे उसको, ब्रह्मा लोक रहेगा ही नहीं, ऐसे बातें कर रहे हैं वो। अभी बच्चे ऐसे के लिए बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर शक्ति है, वो भगवान के पार्षद है वो। तो कुछ ग्वाल बाल ने क्या बोला, नहीं अपने लाला की कोई लीला होगी, उसमें क्यों डिस्टर्ब करते हो, कभी बाद में ब्रह्मा जी को देख लेंगे हम लोग, क्या है इसमें, आएगा ना कभी, आते रहते हैं लोग, देख लेंगे उनको, अभी शांत रहते हैं, वो सुला रहा है सो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देख लेंगे। इसलिए ब्रह्मा लोग ढसा नहीं पृथ्वी पर, फिर सो गए लोग। फिर एक साल के बाद में ब्रह्मा जी को थोड़ा सा प्रकाश आया हृदय में, मन में, बुद्धि में, तो ब्रह्मा जी ने आके लौटा दिया बच्चों को। बच्चे बड़े व्याकुल थे कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण भी व्याकुल थे बच्चों को मिलने के लिए। उसके बाद में गानबन में उनकी नेचुरल सभा जो होती थी, होती रहती थी, वो आ गई। अभी ग्वाल बालों की संगीत गोष्ठी को सुनने के लिए ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि पक्षी बनकर पेड़ की डाली पर आकर बैठते थे, स्तब्ध होकर। स्तब्ध होने का मतलब क्या है, फुल्ली स्टंड, दिग्मूढ़ कहते हैं उसको, दिग्मूढ़ मतलब अवाक, अवाक यानी कोई भाव ही नहीं है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि कोई प्रकट ही नहीं हो रहा है कुछ, स्तंभित कहते, स्तंभ विकार कहते हैं उसको, बहुत सारे नाम है, दिग्मूढ़, अवाक, स्तंभ विकार, स्टंड। सारे ऋषि मुनि जो तप कर रहे हैं विश्व ब्रह्मांड भर में तप कर रहे हैं, अनेक लोकों में तप कर रहे हैं, वो सब लोग पक्षी बनकर वहां आके कहते लाइन से बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं है, इतने बड़े पंडित हैं लेकिन सुनने के लिए आते हैं। और उसमें शंकर जी, सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष सब लोग आते हैं। उनकी विशेषता क्या है, जन्म से ही संगीतकार होते हैं वो, जैसे बंदर जन्म से ही ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्टिक होता है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बचपन से ही वो आपके ओलंपिक को भी हरा सकते हैं, क्योंकि जन्म ही ऐसा है वो, उसके अंदर कोई अलग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे गंधर्व बन के तो आप जन्म से ही गाने लगेंगे, आपको कोई कला की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट होंगे, लेकिन सब लोग गवैया है और बाकी लोग बजाने वाले हैं, कुछ कुछ डांस करने वाले हैं, कुछ गाने वाले हैं, कुछ कविता लिखने वाले हैं, ऐसे सब कुछ परिपूर्ण है पूरा उनका, वाजंत्री बैंड पूरा है उनका। वो लोग भी आते थे गानबन में सुनने के लिए, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि अपना सर रुबाब से नहीं आ रहे कि हम गंधर्व राज आ रहे हैं तुम्बुरु, ऐसा नहीं है, सब लोग अपने कोने कोने बैठते थे जगह लेकर। शंकर जी आ गए तो ग्वाल बाल गए, ए डमरू वाले कछु बाने बजाने को आवे, नहीं तो चुप रहो, आराम से बैठो उधर, मतलब अगर हिम्मत है तो गाओ, नहीं तो उधर बैठो जाके। शंकर जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी आए, अरे ब्रह्मा आयो, ब्रह्मा आयो, चार मुख वालो ब्रह्मा आयो। सब भागे, उनको याद था ना वो कि हमको पकड़ के ले गया था, हमने उनको उस टाइम पे मौका दिया था। सब जाके दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे उनके और ताने मारने लगे। जब आप कभी जाते ना गांव में, जाते ना आपने कभी गांव, पता नहीं जब गांव में समझो आप अकेले जा रहे हो कोई और लड़के लड़कियां वहां पर आज बाजू हैं तो आपको ना बहुत ताने मारेंगे वो, है शहर से आए हो है कछु, आवे कि ना आवे कछु, ऐसे एकदम ऐसा पूरा एम्बरेस कर देते आपको। तो वैसे दाढ़ी खींच के बच्चे लोग क्या बोल रहे, हे ब्रह्मा जी कुछ गाना बजाना आता है क्या तुमको? दूसरा बोलता है कैसा गाना बजाना आएगा, इनको पोती इतनी फुर्सत मिलेगी तब गावे बजाएगो। मतलब क्या, पोती वोती पढ़ने वाले इतने पंडित है ना, ये पढ़ने से फुर्सत मिलेगी तब गाना सीखेंगे ना। गाना कब सीखता है आदमी, जब फ्री होता है तो गाना सीखता है। ऐसा बहुत सारा ताना मारा उनको, वो बोला हिम्मत है तो गाओ नहीं तो चुप बैठो। ऐसे ब्रह्मा जी को चुप बिठाया और फिर ग्वाल बालों ने गाना शुरू कर दिया तो ब्रह्मा भी अवाक हो गए, शिव जी भी स्तब्ध हो गए, सब वातावरण शांत हो गया और केवल ग्वाल बाल गा रहे हैं। कहीं पर उनका नाम नहीं है गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ पंडित सुबल जी महाराज, पंडित श्रीकृष्ण महाराज, पंडित अर्जुन जी महाराज, पंडित वसुदामा जी महाराज, पंडित उज्ज्वल जी महाराज, पंडित अंशु जी महाराज, कोई किसी का नाम नहीं उधर, मंडली भद्र जी महाराज, सब ऐसे ही खेलने वाले मजाक करने वाले बच्चे हैं। बहुत सारा ताने मारे उन्होंने ब्रह्मा जी को। इसका मतलब क्या, ऐश्वर्य ही नहीं ऐश्वर्य संपन्न लोग भी एकदम बेकार हो जाते हैं ब्रज में आकर, कोई उनका पोजीशन बचता ही नहीं। पार्वती जी आई थी भगवान के जन्मोत्सव में और गणेश जी को लेकर आई थी गोद में। अभी बच्चा कैसा है ना, हमेशा गोद में रहता नहीं ना, कभी छोड़ना पड़ता नीचे, कुछ चलता है मैया ले लो गोदी, फिर बैठे, फिर थोड़ा बोलता है नहीं छोड़ दो नीचे, तो छोड़ना पड़ता है। तो भी बहुत सारा माहौल था उधर, भीड़ भाड़ थी लोगों की, उत्सव मनाया जा रहा था, नाच रहे कूद रहे गीत संगीत बजाया जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ा नीचे उसको। उतने में नंद महाराज ने उधर घोड़े हाथी बैल गाय सब दान देना शुरू कर दिया। तो गाय बैल तक तो ठीक रहा, लेकिन जब हाथी बांटने का समय आया ना, तुरंत इसने अपने हाथी को उठाकर गोद में ले लिया, भाई ये भी दान में बढ़ जाएगा तो मैं क्या ले जाऊंगी। हाँ क्योंकि तो हाथी का सर है ना इसका, ये भी बढ़ जाएगा होलसेल में। शंकर जी खड़े नंदी का पूछ पकड़ के खड़े, क्योंकि तो बैल बढ़ रहे तो मेरा भी बैल बढ़ जाएगा, तो भी खड़े जो उनके ऐश्वर्य का मान सम्मान का चिन्ह है उधर। अभी उनका क्या पोजीशन है, अगर आप कैलाश जाओगे तो शंकर के सामने नंदी का क्या पोजीशन है, सब उसको प्रणाम करके फिर नंद शंकर को मिलने जाते हैं, वो नंदी को पूछ पकड़ के खड़े उधर। तो ऐश्वर्य ही नहीं ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति भी वहां पर बिना कुछ नहीं हो रहा जाता है, ही बिकम्स यकश्चित, यकश्चित हो जाता है वो। ऐसे अनंत कहानियां है ब्रज में, सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी आदमी ऐश्वर्य से मतलब विरक्त हो जाता है और कोई भी आके उनको ऐश्वर्य से प्रभावित भी नहीं कर सकता है, नोबडी कैन इम्प्रेस। हरिदास ठाकुर के पास इतना ऐश्वर्य था भक्ति का, साक्षात माया देवी अपने पूरे शक्ति के साथ में आई और उसकी शिष्य बन गई, उसको लुभाने के लिए आई थी, उसका टेस्ट करने के लिए आई थी, वो खुद उसकी शिष्य बन गई। एक वेश्या भी आई थी सज धज कर, तीन रात तक हरिनाम सुनती रही, हरिनाम का माधुर्य ऐश्वर्य उन्होंने चखा तो खुद उनकी शिष्या बन गई और चरणों में गिर के बोले मैं माफी चाहती हूँ, उसके कहने से आई थी तुम्हारा शील हरण करने के लिए, लेकिन क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे, मैं शिष्य बना लूँ। तो इतनी सुंदर औरत ने सर मुंडवा लिया और शिखा रखा और सारा धन जो है वो ब्राह्मणों में बांट कर आई, वो निर्धन बनकर आई और उसी झोपड़ी में रही जहाँ पर ये भजन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि यहाँ रहो भजन करो, तुलसी के सामने बैठकर तुलसी को जल दो। तो पूरा नवद्वीप उसके चरणों में आया, वो वेश्या के चरणों में दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संत बन गई वो, मतलब दुर्मार्ग करने वाली, दुर्मार्ग से जीने वाली, उसकी संपत्ति बहुत गड़गंज थी, वो सब कुछ दुर्मार्ग भी छोड़ दिया, ऐश्वर्य भी छोड़, सब कुछ छोड़ के प्रेम मक्ति का सौंदर्य ऐश्वर्य लेके बैठ गई वो। एनीवेज, तो ये ब्रज की जो रज है ना, वो ब्रज का जो प्रसाद है, वो भी कितना माधुर्यपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है। ये देवता लोग सब लोग आते हैं भगवान का प्रसाद ब्रज का लेने के लिए, लेकिन उनको मिलता नहीं है वो। हम लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं, हम लोग को देवता भी नहीं है, फिर भी हमको हमेशा यहाँ आते ही मदन मोहन जी का सबका महाप्रसाद, गिरिराज जी का अपने आप आ जाता है। वहाँ जाएंगे तुरंत श्री जी का प्रसाद आ जाता है, महाप्रसाद। वृंदावन में रहेंगे तो कृष्ण बलराम का, बांके बिहारी का, राधा वल्लभ जी का रोज आता है, रोज रोज बाय डिफॉल्ट पैक करके हमारे घर पे राजभोग आ जाता है। तुम्हारी क्या योग्यता है, क्या तप किया है, क्या भजन किया है, कुछ नहीं किया है, फिर भी ऐसी कृपा है भगवान की। तो ब्रह्मा जी एक बार ऐसे ही भगवान का महाप्रसाद खाने के हेतु ब्रज में आ गए, तो देखते हैं रोज ना कि जमुना किनारे बैठते हैं, गोलाकार कमलाकार बैठ जाते हैं और फिर खाते हैं सब लोग प्रसाद, एक दूसरे की जूठी भी खाते हैं, निकाल के भी खाते हैं, भर के भी खाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, जो भी करना नहीं चाहिए सब कुछ करते हैं। जो आपके नियम में नहीं बैठते सब कुछ करते हैं। फिर भगवान उनको जान पता था कि वे जब खाना खाते हैं ना, हो गया ना, उसके बाद में जमुना जी में जाके हाथ धोते हैं। बच्चा कैसे खाता है, हम लोग कैसे पूरा चाट के पूरा हर चावल का पूरा दाना फिर सब निकाल के खा जाते ना, सब कुछ करके खाते हैं हम लोग। और हमारे घर में ऐसी भी रिवाज थी कि उधर ही थाली में ऐसे हाथ धोते थे और कटोरी का पानी भी पी जाते थे, कटोरी और थाली में पानी बहा कर उसको भी डाल के पूरा पीते थे, फिर हाथ धोते थे। अच्छी तरीका है वो, क्योंकि कोई भी प्रसाद का एक मिलीग्राम भी उसमें ना गटर में जाता नहीं है, किधर नाली में घुसता नहीं है। लेकिन बच्चे लोग ऐसे नहीं खाते हैं, बच्चों लोग के इधर दाने इधर दाने, ड्रेस पे दाने, हाथ पे 50 दाने ऐसे जाते धोने के लिए जाते हैं, तो फिर वो धोएंगे तो जल में गिरेगा ना सब महाप्रसाद। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, अरे सबको मैं शरीर देता हूँ, सबका योनि मैं बनाता हूँ, तो मैं खुद मछली बन जाता हूँ, और जब भगवान हाथ धोएंगे और कुछ बहेगा ना पानी में, वो मैं खा जाऊँगा महाप्रसाद। ब्रह्मा जी को अभी आपको क्या लगेगा, अरे कितना देखो पावर भी उसके पास है, पावर का इस्तेमाल भी कितना अच्छी तरह से कर रहा है, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, महाप्रसाद मिलेगा उसको। तो भगवान गए हाथ धोने के लिए, बहुत अच्छा स्वच्छ जल था, ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शी जल था, एकदम क्लियर वाटर था। हाथ धोने गए, देखा कोई मछली घूम रही है, तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो क्या हुआ कि ब्रज में लीला कर रहे हैं सब, भगवान तो भगवान ही है, समझ गए कि ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर मछली बनकर महाप्रसाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को देखा, मछली को देखा, दोना में पानी लिया और जमीन पे हाथ धोया, ब्रह्मा जी उधर ही रह गए। कहने का तात्पर्य क्या है, देवताओं को भी वहाँ पर महाप्रसाद मुमकिन नहीं है। तो ऐसे वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य थे प्रभुदास जलोटा, ये कोई अपने जलोटा का संबंध नहीं है, बहुत पुरानी बात है। प्रभुदास जलोटा अच्छे संत थे, लेकिन धनी थे, बहुत गृहस्थ थे, बहुत बड़े भक्त भी थे, तो उनके कहने से वृंदावन में आए थे। तो वल्लभाचार्य ने उनको ना श्रीनाथ जी का महाप्रसाद दे दिया सुबह सुबह, समझो आप भी, आप अभी समझो आप सो के उठ रहे हैं, खड़खड़ खड़खड़ बेल बजी और आपको दरवाज़ा खुला तो किसने बोला ये लो महाप्रसाद खा लो, तो आप क्या करेंगे, अभी मुंह भी नहीं धोया, अभी मुंह धोऊंगा, स्नान करूंगा, संध्या करूंगा, स्नान करूंगा, गायत्री करूंगा, फिर खाऊंगा। तो वैसे उन्होंने बोला, क्योंकि वो अच्छे ब्राह्मण थे जलोटा। तो क्या बोले उनको वल्लभाचार्य, देखो सुनो, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज, यत्र वृंदावन तत्र लक्ष्या अलक्ष्या कथा कुतः। आगे बताता हूँ उसका अर्थ क्या है। जलादपि रजः पुण्यम, रज सो अपि जलम वरम, यत्र वृंदावन तत्र स्नात्वा अस्नात्वा कथा कुतः। बहुत सिंपल है संस्कृत, इतना डिफिकल्ट नहीं। देखो क्या कहते हैं वो, अरे इधर ब्रज में हर वृक्ष पर, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, यहाँ पर हर एक वृक्ष पर वेणुधारी कृष्ण बैठा हुआ है, पत्ते पत्ते पर चतुर्भुज, वही भगवान पत्ते पत्ते पर विराजमान है। ऐसे वृंदावन में ग्राह्य अग्राह्य मतलब लक्ष्य अलक्ष्य, यानी कुछ वस्तु लेने लायक होती है, कुछ वस्तु लेने लायक नहीं होती है, तो ऐसे वृंदावन में कोई ग्राह्य या अग्राह्य कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पर त्याज्य नहीं है और ग्राह्य अग्राह्य भी नहीं है। आपको समझ में आया, मतलब लेने लायक और न लेने लायक ऐसी कोई वस्तु नहीं, हर चीज यहाँ पर दिव्य है। आगे क्या बोलते हैं, अरे जल से रज श्रेष्ठ है यहाँ पर, और रज से जल श्रेष्ठ है, मतलब कौन किसे श्रेष्ठ है ये कह नहीं सकते हम। जमुना जी का जल श्रेष्ठ है कि ब्रज की रज श्रेष्ठ है, नोबडी कैन सी। ऊपर से क्या कहते हैं, यत्र वृंदावन तत्र, इस वृंदावन में स्नान किया हो या नहीं किया हो कौन पूछता है, कथा कुत, कथा कुतः, हु इज हु केयर्स। ये सुनते ही तुरंत वृंदावन में जल से रज श्रेष्ठ है, रज से जल श्रेष्ठ है, इसलिए वृंदावन में स्नान अस्नान विचारणीय नहीं है, नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। तुरंत प्रभुदास जलूरा ने तुरंत महाप्रसाद खा लिया। ऐसे ही महान पंडित थे, कौन कौन थे वो, सार्वभौम भट्टाचार्य, नवद्वीप के विद्यापीठ था उनका एक खुद का, जो उधर नेपाल के पास जाकर, उधर एक रूल था नेपाल के पास, एक बहुत बड़े पंडित थे उनके पास रूल था, कोई नोट्स नहीं बनाने का, मैं जो सुखाऊंगा याद रखने का, नो नॉट अलाउड फॉर नोट्स। तो ये इतने बुद्धिमान थे, क्योंकि स्वयं बृहस्पति के अवतार थे, इतने बुद्धिमान थे, उसके पास में गए और ऐसा सब सुन लिया, आके पूरा नवद्वीप में आके सब उतार दिया, और वो पूरा उतार के उसका विद्यापीठ बनाया, यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, विद्या विद्यानगरी, विद्यानगरी नाम का एक देश, अच्छा जगह है उधर, जानू द्वीप के पास में है। ऐसे पंडित जब भी उनको पता चला कि महाप्रभु जन्म आ रहे हैं, तो वो नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी गए, और राजा था ना वो प्रताप रुद्र, उसके राजगुरु बने, मतलब बहुत बड़े पंडित थे वो, साधारण पंडित नहीं थे। उस समय हमारा था ना वो, अभी कैसा है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वर्ल्ड में फेमस है यूनिवर्सिटी, सब लोग जाके वहाँ पढ़ना चाहते हैं, वैसे विद्यानगरी थी, पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि वो व्यक्ति तो गुजर गया जिसने कंडीशन रखी थी ना कि लिखना नहीं वहाँ पर जाके उसके पाठशाला में, तो वो तो गुजर गया, उसका सारा नॉलेज किसी के याद में नहीं, किसी के नोट में नहीं, वो सब इधर था, तो सब लोग यहाँ पढ़ने आते थे, इतना बड़ा पीठ था विद्या का, और हर रूल में हर रेगुलेशन में हर तत्व में निपुण थे वो, व्यवहार में भी, अपने लालन पालन में भी, और विद्या में भी। तो वो जाके राजगुरु बने प्रताप रुद्र के, और फिर बड़ी सुंदर कहानी है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु का संबंध हुआ उनका, महाप्रभु जी ने कृपा की, 7 दिन उसकी सुनी, 1 दिन अपनी सुनाई, तो बेचारा भक्त बन गया वो, पूरा ज्ञानी योगी व्यक्ति था, ब्रह्मवादी, एकदम भक्त बन गया पूरा वो, एकदम सा गंभीर, वो कैसे रहते ना, गंभीर रहते, कभी हंसते भी नहीं है ज़्यादा एकदम गंभीर रहते, खाली ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं बस, हमेशा विरक्ति, ज्ञान, रूल रेगुलेशन, प्रवचन, दंडवत कर रहे लोगों को आशीर्वाद दे रहे हो, सब गंभीर एकदम, नो हंसी मजाक। ओके, तो अभी कड़क नियम होता है ना, ब्राह्मण लोग होते ना, हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हो, है ना, पूरे सुबह उठकर बिना जल पिए पूरा साधना पाठ पूजा भगवान की पूजा सब कुछ करके, तुलसी पूजा करके, कुएं से पानी निकाल के सब कुछ करके, उसके बाद निवृत्त होकर वो जो पवित्र वस्त्र है उसको उतार कर चेंज करेंगे, तब पहला भोजन करेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। ये कड़क नियम था, क्योंकि वो कुछ करेंगे तो आप आगे का पूजा ही नहीं कर सकते। तो ये सर्वम भट्टाचार्य भक्त बन गए, तो भक्त बनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ना कभी भी जगन्नाथ का प्रसाद लाकर सब लोगों को बांटते थे। एक दिन सवेरे भोर के समय 5 बजे के पहले महाप्रसाद लेकर सार्वभौमों के दरवाजे पे आए, खाड़ 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 खाड़, खड़ा उठाओ उठो, तो उठ के उन दरवाजा खोला, तो महाप्रभु चरणों को वंदन किया, बोले तो ये जगन्नाथ का महाप्रसाद लो। तो अब तभी तो जस्ट उठे थे वो, कोई मुंह भी नहीं धोया था, ऐसे दरवाजा खुलने को आए, तो महाप्रसाद जैसे ही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु ने दिया जगन्नाथ का, तुरंत मुंह डाल के खा लिया उन्होंने। तो महाप्रभु बोल रहे, अरे इतने बड़े पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, राजगुरु ऑफ प्रताप रुद्र ऑफ ओरिसा क्षेत्र, क्या हो गया आपको तो बहुत तालियां बजाई, भगवान ने नृत्य किया वहां पर, कि आज ये प्रमाण है कि सार्वभौम जी भक्त बन गए। उसके बाद में वही सार्वभौम भट्ट जी, इंद्रदम सरोप है ना, उधर कोने में एक सरोवर है इंद्रदम सरोवर, वहां पर ये वाटर फाइट खेल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, वाटर फाइट, कैन यू इमेजिन, बुड्ढा आदमी विद्वान पंडित और अद्वैत आचार्य भी खेल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी खेल रहे हैं, श्रीवास पंडित भी खेल रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु इनके साथ खेल रहे हैं, सार्वभौम के साथ, और लोगों को बोल रहे, देखो ये महान पंडित, देखो महान महान पंडित, विश्व का सबसे बड़ा पंडित, देखो कैसे बच्चों की तरह खेल रहा है। मतलब जब भक्त बनता है आदमी ना, तो बड़े से बड़ा आदमी बच्चा बन जाता है, बाल्यकाल में आ जाता है। ये उसकी भक्ति का एक प्रमाण है कि अभी इसमें कोई संकोच नहीं है। पहले हंसता भी नहीं था, अभी हंसता क्या, अभी मस्ती कर रहे हैं बुढ़ा आदमी। ये प्रेम का ऐश्वर्य का परिणाम है। जब प्रेम का ऐश्वर्य की दीक्षा होती है ना, तो सारा आपका ऐश्वर्य, ज्ञान, विरक्ति सब खत्म हो जाती है। उसको कोई वैल्यू नहीं बचती है, आपके पूर्व कीर्ति की वैल्यू भी नहीं बचती है। अभी देखो हमारे शंकराचार्य ब्रज में कैसा है ना, रज का बड़ा महत्व है। एक भी मैंने आपको बताया प्रसाद का, दो कहानी बताई। प्रसाद जो है ना कृष्ण का, वो कहते हैं आप किसी भी अवस्था में हो, अभी भी शौच किया हो आपने, स्नान में हाथ भी धोए नहीं हो, और माँ प्रसाद आता है तुरंत खा लेना चाहिए। स्त्री कोई अशुद्ध अवस्था में होगी, माँ प्रसाद आया तुरंत खा लेना चाहिए। आपने स्नान किया ही नहीं किया, मुंह अभी तक खुला नहीं किया है, माँ प्रसाद आया तुरंत खा लेना चाहिए। वही मुख मार्जन है, वही शरीर शुद्धि है, वही सब नियम है, जो स्मार्त ब्राह्मणों के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन स्मार्त ब्राह्मण जो है वो ऐश्वर्य के दायरे में होते हैं, माधुर्य के दायरे में नहीं होते, है ना। वैसे रज का महत्व है। आज भी ब्रज में रज लगाए बिना बर्तन अगर नहीं धोते आप, तो बर्तन को शुद्ध नहीं मानते। आप कोई भी अपना विम लगाओ, कोई भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, तार से धो, तेल का दाग निकालो, कुछ निकालो, जब तक ब्रज की रज मट्टी उसको से नहीं घुमाते अंदर आप, तब तक उसको पवित्र नहीं मानते। मुंबई में आप मट्टी घुमाएंगे तो पवित्र बर्तन को अपवित्र किया ऐसे बोलेंगे, बोले मट्टी आ गई उसके अंदर, कितने जंतु पोर्स और कितने बैक्टीरिया आए होंगे उसके अंदर, मट्टी में क्या क्या नहीं रहता है, ऑल सब डिसीज के पोलन उसके अंदर रहते हैं, पोर्स स्पोर्स। तो ये ब्रज रज जो है ना, वो अभी बताऊँ उसके बारे में, देखो समझ में एक प्रॉब्लम नहीं, कुछ देर को समझ लो कि सारे वैकुंठ जितने हैं ना ब्रह्म ज्योति में, उसके मालिक आप हो, कितना ऐश्वर्य होगा। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानव, एक एक वैकुंठ में कोटि कोटि लक्ष्मियां अलंकार से ऐश्वर्य से लदी हुई विष्णु की सेवा करती रहती, कितना ऐश्वर्य होगा वैकुंठ में। और एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठ है ब्रह्मा ज्योति में। और एक क्षण के लिए समझ लो कि आप उसके मालिक हो, सब धन आपका है वो। तो कहते हैं सारे वैकुंठों के धन को लेकर आप पृथ्वी के वृंदावन के रज का एक कण खरीद नहीं सकते, सारा बेकार है वो, यूजलेस है। जैसे आपके पास समझो 50 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में है और अमेरिका लेके गए, कोई वैल्यू नहीं उसकी, जब तक डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उसका वैल्यू नहीं है, वो पेपर है खाली, यूजलेस है वो। जब तक वो करेंसी वाले दुकान में जाकर उसका रेट पकड़कर उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे और करोड़ों के बदले में कुछ कुछ हजार लाख डॉलर पैदा होंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही वैकुंठ वाले धन की करेंसी यहां पर काम नहीं करती है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर कण में यहां पर वो रहस्य छुपा हुआ है। राधा और कृष्ण ग्वाल बालों के गोपियों के चरणों का स्पर्श होकर वो रज के अंदर इतनी पावर आ गई है कि वो रज का स्पर्श होते ही सारे प्रेम का रहस्य प्रकट हो जाता है, वो सारा ऐश्वर्य जीरो वैल्यू हो जाता है। इसलिए वो रज की आप तुलना नहीं कर सकते, आप यू कैन इवन थिंक आई कैन परचेज दिस विद दैट, इम्पॉसिबल है वो। तो अभी वो हमारे थे ना शंकराचार्य, वो 12वीं सदी में आए थे, 12वीं सदी में 8वीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बहुत पहले, आज से बहुत साल, सैकड़ों साल पहले आए थे। शंकर जी भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर, स्वयं उनकी आज्ञा से मायावाद सिखाने के लिए आए थे, लेकिन बड़े नियम के पक्के थे वो। वो जहाँ जहाँ जाते थे प्रवचन करने के लिए, तो क्या करते थे, जहाँ समझो अभी समझो मैं जा रहा हूँ, मेरा बरसाने में लेक्चर है, तो फिक्स हो गया कि बरसाने में ये जगह लेक्चर करना है, वहाँ पर आसन लगाना है, उस पर वो कुशा रखना है, उसके ऊपर सब व्यवस्था होती है। तो जहाँ पर इनका तय हो गया है, वहाँ पहले जहाँ बैठने, समझो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठने वाला ये चारों ओर खोदा जाएगा, पहले भूमि खनन किया जाएगा, उसकी पूरी मट्टी निकाली जाएगी, फिर क्या किया जाएगा, उस भूमि का गोबर से लेप किया जाएगा, गोबर गोमूत्र से उसको लेप करके फिर भरा जाएगा उसको, क्या समझकर कि लोगों ने वहाँ पर कितने कर्म किए होंगे, अच्छे बुरे गंदे कितने कर्म किए होंगे। वहाँ पर हमारे महाराज जी आके बैठेंगे तो नियम था कि पूरा वो मट्टी निकालो, वो चारों ओर से चौकोन बनाओ, गड्ढा खोदो, उसमें गोबर गोमूत्र का लेप डालो, मंत्र बोलकर लेप करो उसका, उसके बाद पर शुद्ध मंत्र उच्चारण करके वो जल सींचो उसके पर, फिर कुशाका आसन रखो, फिर हमारे शंकराचार्य आके बैठेंगे, फिर प्रवचन करेंगे। ऐसी टीम आगे पहुंचती थी, एडवांस पार्टी हर जगह पर। तो एक दिन ये वृंदावन में आने लगे, उनका वृंदावन में कुछ प्रवचन था, तो वृंदावन में आने लगे तो लोग ना रस्ते से पहले से ही खोदना शुरू किया उन्होंने, तो बोला ये बंद करो सब भूमि खनन, कुछ मत करो। तो सभी जो थे ना फॉलोअर्स, उनको लगा कि महाराज जी क्या तबीयत खराब है क्या, आज का कुछ अलग ही बोल रहे, कुछ ये मत करो वो मत करो, ठीक है छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो वृंदावन में प्रवेश किए तो उधर भूमि को लेप करना शुरू किया, खनन करना मन बना कर देना, खनन नहीं करना है, खुदाई नहीं करनी, तो लेप करना शुरू किया, हर जगह गोबर का लेप करना शुरू कर दिया, अरे लेप भी मत करो। फिर एकदम कथा की जगह पर पहुंच गए, तो वहां पर ये तो कम से कम सोच रहे भी लेप भी करने को नहीं दे रहे, खुदाई भी करने को दे रहे, तो उन्होंने तुरंत मंत्र बोल के सिंचन करना आरंभ किया, तो ये जाके उस पर लोटपोट हो गए, मतलब वो मट्टी के अंदर खुले बदन से पूरा लोटपोट होने लगे, मतलब लोड़ू दागले सब बदन पे मट्टी लग रही है। अभी वो इतने स्वच्छ पुरुष, इतने महापुरुष थे, अभी वो स्नान करेंगे फिर आएंगे, क्या कर रहे हैं बाबा को क्या हो गया आज, कुछ दिमाग में परेशानी है कि शरीर में रोग है पता नहीं, ऐसा कभी मट्टी में लोटपोट नहीं हुए, मट्टी से जितना डरते थे वो हमेशा खुदाई सिंचन लेपन करके बाद में बैठते थे। तो फिर एक ने हिम्मत की पूछने की, किसकी हिम्मत है पूछने का ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर एक ने पूछे महाराज क्या हुआ आज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बढ़िया हूँ एकदम दिमाग से सही हूँ, कुछ गलत मेरे को नहीं हुआ है। अरे यहाँ पर खनन सिंचन लेपन करने की कोई जरूरत नहीं है, यह ब्रजभूमि है, इसमें तो नहाना चाहिए, रजोभिषेक करना चाहिए, इसको खाना चाहिए, पानी के साथ पीना चाहिए उसको, क्योंकि इसमें कृष्ण के चरणों के रहस्य, भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। और रज में लोटपोट हो गए वो, ये ब्रज की रज की महिमा है। अभी शंकराचार्य कौन है, स्वयं शंकर भगवान है, एक स्पेशल मिशन पे आए वो, और उनका ये लीला है, सबको कुछ पढ़ा रहे वो, पट्टी पढ़ा रहे हैं सबको, लेकिन एंड में क्या बोले, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, अरे मूर्ख व्यक्ति जीवन भर मेरा ज्ञान सुना तुमने, अभी एंड में गोविंद का भजन कर, यही तेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि दिल से भगवान के भक्त थे वो, भगवान की सेवा में आए थे, मायावादियों को ऐसा हटाने के लिए आए थे, ग्राउंड क्लियर करने के लिए आए थे वो, ताकि मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य आकर भक्ति का बीज डालें। तो ये सब लोगों को उन्होंने क्या किया, अपनी पुंगी बजाकर जंगल में, गुफाओं में, वन में, हिमालय में छुपा दिया सबको, शहर से दूर कर दिया। फिर अपने रामानुजाचार्य आए, फिर उन्होंने भक्ति का तत्व सिखाया, फिर मध्वाचार्य आए, उन्होंने भक्ति का तत्व सिखाया, फिर महाप्रभु आए, परम भक्ति का ज्ञान दिया लोगों को। ऐसा ब्रज का महिमा है। और एक बार दावानल कुंड पे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनके गुरु कौन बताइए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, परम विरक्त संत, हाँ नमक गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम भुजाये ते नमः, साक्षात विप्रलम्ब के मूर्ति थे वो, विप्रलम्बी नहीं थे, विप्रलम्ब की साक्षात मूर्ति थे वो। और वो एक बार वहाँ प्रवचन दे रहे थे दावानल कुंड, दावानल कुंड में क्या हुआ, भगवान ने आग पी लिया था, कालिया को दमन करने के बाद में लेट हो गया था, और कालिया जहाँ दमन हुआ वहाँ से नंदगांव दूर था, रात को लेट हो गया तो अंधेरे में जाना अच्छा नहीं है, इसलिए वहीं पर सब लोग सो गए नंद बाबा वगैरह, तो वहाँ पर आग लगी थी, सबने त्राही त्राही वाम किया, तो भगवान ने आग पी लिया पूरा। उस जगह पर बड़ा कुंड बनाया गया, तभी कुंड नहीं था, वज्र नाम ने बाद में बनाया दावानल कुंड, वो बिहारी जी के बगीचे के सामने है बिल्कुल, अक्रूर घाट के रास्ते पर है वृंदावन में। तो वहाँ पर कुछ लोगों को बैठकर रज में बैठकर प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन समाप्त हो गया तो ये उठ गए, लोग भी उठ गए। आप मुझे बताइए मिट्टी पर जब बैठते हैं आप, और जब बैठकर उठते तो क्या करते हैं, सबने अपना काम शुरू किया, जोर से चिल्लाए, मूर्ख लोग हो तुम सब लोग, अरे ब्रह्मा शिवादि देवता भी यहाँ पर लालायित रहते हैं, एक कण भी उनको प्राप्त नहीं होता है, तुम्हारे शरीर पर इतने कण है, तुम सब उड़ा रहे हो उसको साफ कर रहे हो, दुर्भाग्य व्यक्ति हो तुम। अपने तो कॉमन है ना, अभी धोती में काला लगे तो तुरंत निकाल के चले जाते हैं हम लोग, लेकिन व्हाट इज ब्रज कॉन्शियसनेस, क्या ब्रज की चेतना का मतलब है कि हम अवेयर रहते हैं, क्या अवैध रहते हैं कि ब्रज की हवा हम खा रहे हैं, ब्रज का पानी पी रहे हैं, ब्रज में प्रसाद पा रहे हैं, ब्रज की धूल में बैठ रहे हैं, ब्रज की रज को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बार ना वृंदावन में, उस जमाने में अपना वृंदावन में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं था, इस्कॉन का मंदिर था लेकिन अपना खुद का ऐसा कुछ आश्रम रूम कुछ था नहीं, तो हम लोग अजय पिरामल के माता जी के बंगले में रहते थे, मैं महाराज जान कभी कभी जाके रहते थे। तो एक समय पर मैं और महाराज साथ में थे, एक साथ रह रहे थे उधर, तो हम लोग ऐसे ना विहार कर रहे थे। जैसे अभी देखो, अभी आपके वृंदावन कॉटेज के बाहर कैसे इस थोड़ी पगडंडी रास्ता है ना, ऐसा 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 रास्ता है, बाजू में दोनों तरफ झाड़ है, पेड़ है, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, हम लोग घूमते घूमते प्रसादम हॉल में आते हैं ऐसे। तो वैसे उनके घर के अंदर भी ऐसे अच्छे बगीचे बने हुए हैं, चलने के रास्ता है, हम लोग दोनों चल रहे थे ऐसे, और बहुत सुंदर हवा, आप इमेजिन कीजिए अच्छी तरह से इमेजिन कीजिए। ऐसे हम दोनों चल रहे हैं, सांझ का समय है और उतरते हुए सन का गोल्डन रेज हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, और वहीं से पश्चिम से हवा आ रही है हमारे ऊपर, और हम लोग चल रहे हैं दोनों। अचानक महाराज जी बोलते हैं, रुक जाओ, आँख बंद करो और हवा को महसूस करो। तो मैंने आँख बंद किया और हवा को महसूस किया कि हवा आके ऐसे लग रही है बदन को, आवाज़ भी आ रही है हवा की, पेड़ों से, पत्तों से, और वो आकर हमको भी छू रही है। तो महाराज कह रहे हैं, विश्वरूप जानते हो ये क्या है, ब्रज में जब हवा आकर आपको छूती है, इसका मतलब कृष्ण आपको आलिंगन दे रहे हैं, कृष्णा इज एम्ब्रेसिंग यू। मैं कभी भी नहीं भूला उसको आज तक, जब भी ब्रज में हवा आती है, चाहे मैं प्रवचन करता हूँ या बैठा हूँ या चल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा आके आलिंगन दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रज कॉन्शियसनेस। और वो कौन देते हैं, दो ही लोग दे सकते हैं, एक ब्रजवासी और एक श्री गुरुदेव। तो हवा तो सब जगह घूमती है ब्रज में, कौन सोच रहा है कि वो आलिंगन दे रहे हैं कृष्ण आपको। जब कोई ब्रजवासी बताएगा या गुरु बताएंगे तभी आपके मन में आएगा, हाँ। वैसे बरसाना के लोग बताते हैं, जल प्रसाद जल प्रसाद जल प्रसाद करके बांटने को आते हैं ना, नमक नमक देने को, राम रस राम रस राम रस करते, और फिर जल प्रसाद जल प्रसाद। क्या कहते हैं, ये जल नहीं है, ये सभी रसों का सार है जो जल के रूप में आपको दिया जा रहा है, इसको भी वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर फेंकना नहीं, जितना जिया सब पीना है। ये आपको दे रहे हैं ना, दाल चावल पकौड़े कचौड़ी सब दे रहे हैं, एक एक कण को खाना है आपको, कुछ छोड़ के जाना नहीं कुत्तों के लिए या गैया के लिए, कण कण को चाट चाट के खाना है, क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्य के बाद में ब्रज में प्रसाद खाने को मिलता है। ब्रज के भूमि में बैठे हुए वहीं के धान्य से बना हुआ और वहीं के ठाकुर जी को लगाया हुआ आपको मिल रहा है, ये किसी को नहीं मिलता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद जब कृष्ण को लगता है कि ठीक है भाई इसको दे दो, तो उसको मिलता है। एक बार मैं और राधानाथ महाराज जी कैंप के बाद बरसाने से हम लोग जा रहे थे कुरुक्षेत्र, किसी के घर पे डेथ हो गई थी, उनके मित्र थे वो, उनको मिलने के लिए, तो मैं उनकी सेवा में था। तो महाराज ने कहा था कुछ प्रसाद बाट पैक कर लो, हम लोग बरसाने से हम लोग रास्ता में खाएंगे। तो प्रसाद मैं पैक करके सब व्यवस्था किया था पूरा अच्छी तरह से, पराठे के रोटी पराठे बना के, फिर कॉलीफ्लावर की सब्जी वगैरह सब पैक किया था। तो हम लोग रास्ता में खाने वाले थे, लेकिन फिर अभी गाड़ी शुरू भी नहीं हुई, हम बरसाने के अंदर ही मार्केट में ही खड़े। महाराज बोले, अरे निकालो प्रसाद खाएंगे हम लोग। तो महाराज फिर एक पराठा खाया, सब्जी खाई, पराठा खाया, सब्जी खाई, मतलब बस हो गया। फिर महाराज बोले, शुरू अभी तुम खाओ। नहीं भाई मैं खा लूँगा महाराज, बाद में खा लूँ। नहीं अभी अभी खाओ, अभी मैंने खाया ना, आप भी अभी खाओ। तो फिर अभी गुरु जी की आज्ञा है, तो फिर मैंने वहीं पर अपना डेरा जमाया और खाने लगा। तो मैंने एक खाया, मुझे लगा ठीक है, अभी सफ़र में ज़्यादा उल्टी वल्टी होती है कभी कभी, एक ही काफ़ी है। तो महाराज ने वो लिया हाथ में रोटी का बक्सा, वो निकाला, मुझे ले लो एक और खाओ। मेरा महाराज मैं खा नहीं पाऊँगा। फिर महाराज बोलने लगे, अभी क्या बोले वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या बोलते हैं, ये प्रसाद तुमने कहाँ से लाया। मैंने कहा लाला जी से। लाला जी मतलब जो वो परिवार है ना, वो परिवार जहाँ पर राधानाथ महाराज जी 6 महीने रहते थे और वहाँ से माधुकरी का किया करते थे, पंडित जी का परिवार, दाढ़े वाले पंडित जी है ना भागवतकार, उनके परिवार से मैंने वो रोटी लाया था। तो बोलते, अरे पंडित जी के घर में घर के ही खेत का गेहूं का रोटी बनता है, आप जानते हो ये पंडित जी के खेत के गेहूं से बना हुआ रोटी है। इस गेहूं को बनते समय कितने मोरों ने वहां पर अपना टट्टी किया होगा, कितने गाय और बैल ने अपना गोबर दिया होगा, इतना बढ़िया देसी खाद मिलकर। हाँ, इतने ब्रजवासी पंडित जी के घर के लोगों से प्रेम से सिंचाई की होगी उसकी, और उससे ये गेहूं बना है। और फिर वो लच्छो दीदी और किशोरी दीदी के चूल्हे में मिथिलेश भाभी के हाथ से बना हुआ रोटी है, खाओ। इसका मतलब उन्होंने रज का वास्ता दिया, मोर का वास्ता दिया, गाय बैल का वास्ता दिया, ब्रजवासियों का वास्ता दिया, ब्रजवासियों को बनाने का प्रेम का वास्ता दिया। कितने प्रेम से फसल काटी होगी, कितने प्रेम से छटका होगा उसको, कितने प्रेम से पीसा होगा, कितने प्रेम से गूथा होगा, किसने प्रेम से बेला होगा, किसके प्रेम से तवे पर और चूल्हे में उसको भुना होगा। और तुम बोल रहे हो नहीं खा रहे हो, खाओ उसको। फिर दूसरी खा ली, फिर तीसरी के लिए भी वही डायलॉग पूरा बताया। मतलब ऐसा शुरू कर रहे थे, सुना जानते हो रोटी इसमें, बोले महाराज ठीक है महाराज खाता हूँ। तात्पर्य क्या है कहने का कि वो ब्रज की रोटी है जो ब्रजवासी बनाते। मैंने आपको बहुत सारी कहानी बताई ना आपको, उधर मैं उधर चढ़ गया था खत पे सूर्य कुंड में, फिर उधर छाछ बटा, फिर रोटी बची, फिर उधर सब्जी दिया। वो सब परम भाग्य की बात है। ये लोग सामान्य लोग नहीं है, ब्रजवासी लोग बड़े राधा रानी के प्रिय लोग हैं, जिनको जन्म प्राप्त हुआ है। उनके हृदय के अंदर कोने में भगवान का प्रेम छुपा हुआ रहता है। वो दिखने में कैसे भी हो, व्यवहार से भी कैसे हो। महाराज जी ने मुझे एक बार ये कहानी बताई थी, जरा पानी पीता हूँ जरा। कि ब्रजवासी मतलब क्या होता है, जिसको पहचानना कितना मुश्किल है। आमतौर पर अगर हम जाते हैं ना वृंदावन में, तो हमको चीटिंग करने वाला रिक्शा वाला मिल जाता है, ज़्यादा पैसे बोलने वाला ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है, दुकानदार कुछ काटने वाला मिल जाता है, मंदिर जाओगे तो पंडागिरी करने वाले लूटने वाले लोग पंडा मिल जाते हैं। तो हमको क्या होता है आम तरह से, क्या है ब्रजवासी, क्या है, क्या कौन बोलता है ब्रजवासी गौरवशाली है, सब तो चोर लोचक के सब लूटने के लिए बैठे हुए। दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन। इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू गो विदाउट डिवोटीज, अलोन जा रहे तो आपने सुना तो बहुत है, लेकिन जो अनुभव आ रहा है उसको लगेगा क्या है ब्रजवासी, कौन से ब्रजवासी है, हर कदम पर लूटने को देख रहे यात्रियों को, कोई प्रार्थना करने को देते नहीं, हाथ जोड़ने के पहले ही पैसे पैसे करने लगते। महाराज ने कहा कि ब्रजवासियों की पहचान होने के लिए भी कृपा लगती है भगवान की, टू नो हु आर द ब्रजवासीज। देखो ने कहानी बताई मुझे, अभी आपको अगर आम ब्रजवासियों का महात्मा नहीं बताया तो आपको लगेगा ये तो बकवास है, कहानी एक्सट्रीम कहानी है। आम कहानी बताना थोड़ा ज़रूरी है। आम ब्रजवासी कैसे रहते हैं ना, जो रियल ब्रजवासी होते हैं वो ना आपके लिए कुछ भी परित्याग कर सकते हैं। खुद भूखे हैं तो खुद की रोटी निकाल के आपको दे सकते हो, मैंने अनुभव किया है। अरे बच्चा स्कूल जा रहा है और बच्चे का टिफिन माँ लेके उसको छोड़ने जा रही है ब्रजवासी माँ, और आप उनको अचानक मिलते हो, आप पहाड़ चढ़ रहे हो मंगला करने के लिए और या तो दर्शनार्थी करने के लिए, मैया भाग रही है नीचे पहाड़ से आ रही है, बच्चे को लेकर स्कूल पहुँचा रही है, और आपको मिलते हैं मैया बोलती है अरे प्रभु जी आप कब आए वृंदावन में, बोला आप ये दो दिन हो गए, अरे कब कब मिलोगे, कब आओगे घर आओगे, अच्छा एक काम करो ये लो ये रोटी सब्जी खा लो ये रख लो। तो हम बोले अरे बच्चा का रोटी है, वो बच्चा स्कूल में क्या खाएगा, कोई बात नहीं दोबारा बना के उसके रिसेस के अंदर पहुंचा दूंगी उसको, आप कब मिलोगे, आप तो वापस मिलोगे नहीं, कौन कर सकता है भाई, तो बच्चे के मुंह की रोटी निकाल के आपको कौन दे सकता है, एक ब्रजवासी ही दे सकता है। 4 बजे हम लोग पहुंचे थे एक घर पे, उधर पंडित जी के घर पे सबसे पहली बार यात्रा लेके गए थे, 22 जवान लड़के, सुबह से कुछ खाया नहीं है, दोपहर ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं, 4 बजे उनके घर पे पहली बार पहुंचते हैं। तो ये लोगों ने अपना पूरा दिन का भंडारा खत्म करके बर्तन मांझ के सब सो गए थे, दे वर स्लीपिंग। हम लोग जब पहुंचे ना झट से किचन में भागे और सब 22 लोगों को ना पेट भर के चार चार पाँच पाँच छः छः गरम गरम रोटी अचार गुड़ क्या बोलते हैं उसको बूरा घी सब खिलाया पेट भर के। वो देख के लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना इन्फॉर्म उस समय मोबाइल था नहीं, उनके पास लैंडलाइन भी नहीं था, हम लोग ऐसे ही टपक गए उनके घर पे, कोई बताने का कोई साधन नहीं था, जाना था उनके पास, बिल्कुल इतनी कहानियां सुन के रखी थी। ऐसे लोग होते हैं, और कैसे पहले कैंप में उन्होंने हमारी सेवा की, हमारे घर में, उनके घर पे उनने, हमने उस समय गए थे ना पहली बार, तीसरी बार जब गए थे वो, हमने आई कैंप लगाना शुरू कर दिया था, तो बोलते एक आई कैंप यहाँ पर लगाओ ना बरसाने में, हमारे यहाँ पर बहुत अंधे लोग हैं। बोले यहाँ पर कहाँ रहेंगे, रहने की व्यवस्था, ऑपरेशन कहाँ करें, अरे हमारे घर पर रहो। अरे घर पर रहो मतलब क्या, दो चार लोगों की बात नहीं है, हम लोग 68 लोगों को ले गए थे, 68 लोगों को ले गए थे, और उन्होंने जो कहा वैसे ही अपने घर पे 68 लोगों को रखा उन्होंने। इतना बड़ा घर नहीं था, अपने से बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं था इतना घर, फिर भी चार चार पांच पांच घुसा दिए कमरे में, टाट के कमरे बनाए, उसमें भी लोगों को रखा, रजाई गद्दे सबको दिए, गर्म पानी टाट के ही बाथरूम बनाए, लेकिन सबको रखा। 12 बजे गर्म पानी करने रखते थे रात को, थोड़ा गुनगुना करके छोड़ते थे, फिर 3 बजे गर्म करते थे, क्योंकि सुबह इतनी ठंड में गर्म कैसे होगा और काम पे कैसे जाएंगे जो। तो 24/7 जग के उन्होंने 68 लोगों का सेवा किया, उधर ही प्रसाद, उधर से ही जाना आना, गर्म पानी रहना, वो सब उधर ही। तो ये तो अभी और बहुत कहानी बता सकता हूँ आपको ब्रजवासियों की। तो ऐसे ब्रजवासी होते हैं एकदम निस्वार्थ निरपेक्ष प्रेमी, जिनके हृदय के अंदर के कोने में कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है। जन्म से कैसे बंदर होता है एथलेटिक चैंपियन, वैसे जन्म से ब्रजवासी भगवान के प्रेमी होते हैं, बाय बर्थ राइट। तो एक ना वृंदावन में डाकू था, कुछ 55-56 की बात है ये, वो इतना खूंखार था कि लोगों को ऐसे मच्छर कैसे मारते वैसे लोगों को मारता था वो, खेलते खेलते बात करते करते। वो इतना क्रूरकर्मा था वो कि फाइनली वो पुलिस को मिला ही नहीं, कितने सालों से पुलिस उसके पीछे थी। तो यूपी गवर्नमेंट में उसका खबर पहुंच गई, तो यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि शूट एट साइट, कि इधर भी दिखेगा ना, ना आगे ना देखो ना पीछे देखो, गोलियां चला दो बस। अभी का कुछ रिसेंट गुना होगा कि नहीं होगा देखो मत, पुराने गुने बहुत है उसके पीछे, जहां दिखेगा वहां गोलियों की बौछार करो, छलनी कर दो उसको। फिर भी वो कितने साल नहीं मिला, शूट एट साइट ऑर्डर के बाद, जन्म का ब्रजवासी पक्का था वो, लेकिन भयंकर खूंखार डाकू था वो, कहीं भक्ति भक्ति का कोई चिन्ह नहीं था उसके अंदर। एक बार फिर वृंदावन के गली में दिखा, पुलिस ने दिखा उसको, और जो गोलियां चलाई उसके ऊपर, तो उसने क्या किया होगा, छाती पर इतनी गोलियां लगी हुई है, वो गोली लेकर वो बांके बिहारी के मंदिर में गया और बांके बिहारी को पुकारते वहीं पे प्राण छोड़ दिए उसने। तो महाराज जी बोला ये ब्रजवासी, बाहर से कितना भी पापी कितना भी हो भगवान देख लेंगे क्या करना है उसका, लेकिन अगर वो बांके बिहारी का भक्त नहीं होता तो बांके बिहारी के मंदिर में गोली लेकर आता क्या छाती पर, वही मर जाता वो। लेकिन बांके बिहारी की गोली तक मंदिर तक भाग गया, भाग के आया वो, और बांके बिहारी को देखकर पुकारते पुकारते शरीर छोड़ दिया उसने। ये कहानी राधानाथ महाराज ने प्रत्यक्ष हमको बताई। तो ब्रजवासी को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको कैसे भी लगते होंगे अच्छे बुरे, आपके अंडरस्टैंडिंग आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपको कैसे भी लगते होंगे, लेकिन ब्रजवासियों को पहचानना बहुत मुश्किल है। डोंट जज ब्रजवासीज बाय एक्सटर्नल बिहेवियर, लेट देम चीट यू गेट चीटेड बट डोंट फाइट विद देम, डोंट ऑफेंड देम। अगर आपका नसीब खराब है आप चीट हो जाओगे कोई बात नहीं, चीट होने के बाद उसको टिट फॉर टैट मत करो, आपके कर्म समझो और निकल जाओ वहां से, लेकिन उनका अपराध भी मत करो, उनको गलत भी मत समझो, क्योंकि भगवान के सखा है वो, भगवान के परम मित्र है वो, उनको भगवान को क्या करना है उनका हिसाब किताब भगवान देख लेंगे, आप हाथ में मत लो कायदा अपने, अपनी शहर की बुद्धि मत चलाओ। इसलिए बार बार कहते ना कि शहर की रजोगुण तमोगुण लेकर ब्रज में मत जाओ, डोंट गो विथ सिटी तमोगुणा एंड रजोगुणा, हाँ संतों के साथ जाओ, उनके संग में उनके औरा में जाओ, ताकि आपके हाथ से सिटी वाली बुद्धि से कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए वहाँ पर। ऐसा वृंदावन धाम है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।